आइए हम अपने सर झुकाएं।
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little birds.
जैसे कि हम यहाँ अच्छी ईस्टर की सुबह जमा हैं, देखिए छोटी कलियाँ खिलने के लिए तैयार हैं, मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं और अपना अपना भाग ले रही हैं, चिड़ियाएं ऐसे गा रही हैं जैसे कि आनंद से उनके हृदय फट जाएंगे, क्योंकि एक ईस्टर है। हम विश्वास करते हैं कि आपने यीशु को मरुओं में से आज के दिन बहुत वर्षों पहले, और हम इस यादगार के दिन को मनाते हैं, और आज ये ईस्टर हम सब के मध्य में आए। हम उसके दासों के समान उसके वचन को समझते हैं कि तब हम उसकी संगति में थे और कि अब हम उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। यहाँ इस आराधनालय में इस सभा को आशीषित करें और सारे राष्ट्र में जहाँ कहीं ये टेलीफोन के द्वारा जाए, सारे बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें। होने पाए ये ईस्टर उनके लिए भी हो बीमारी से सामर्थ्य में निकासी, और वे जो पापों और अपराधों में मरे हुए हैं होने पाए वे मसीह के द्वारा आज जिए। और हम तेरी स्तुति करेंगे क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। निश्चय ही आज प्रातः ये शानदार सौभाग्य है कि यहाँ जेफरसनविले इंडियाना में वापस आए। इस महान सभा के साथ आराधनालय भरा है और लोग बाहर चारों ओर खड़े हैं, इसके अंदर और हर जगह, फोन पर, राष्ट्र के हर स्थान पर। यहाँ एक सुंदर सुबह है। सुबह 5 बजे मेरी छोटी मित्र अपनी लाल छाती के साथ उड़कर वहाँ खिड़की पर से मुझे उठाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका छोटा हृदय ये कहते हुए फट जाएगा, वो जी उठा है। मैंने सदा इस छोटी चिड़िया के विषय में सोचा है जैसे कि मेरी मित्र हो, क्योंकि मुझे ये पसंद है। जैसे कि इसके विषय में दंत कथा है, कहते हैं एक छोटी भूरी चिड़िया ने उसे देखा कि वो क्रूस पर यातना सह रहा है जहाँ की पाप ने उसे यहाँ डाला। निसंदेह उस छोटी चिड़िया ने कोई पाप नहीं किया था, उसे उस छोटी चिड़िया के लिए नहीं मरना था, परंतु वो उड़कर क्रूस तक गई और अपनी छोटी चोंच से उन कीलों को खींचने का यत्न किया और उसने अपनी सारी छाती लाल कर ली। और इसी प्रकार से मैं भी अपनी करना चाहता हूँ, एक ढाल के समान, कि इस महिमामय चीज की रक्षा करूँ जिसके लिए वो मरा। ये अनुभव करते हुए कि हमारा समय निश्चित है, विशेषकर उन दोस्तों के लिए जो इस टेलीफोन के द्वारा सुन रहे हैं, आज प्रातः मैं आपका ध्यान उस चित्र पर लाना चाहता हूँ जो कुछ समय पहले कैमरे के द्वारा खींचा गया था, उस एक दर्शन का जो मुझे इस आराधनालय में मिला था कि इंडियाना छोड़ एरिजोना को जाऊं, जहां मुझे पैरामिड के आकार में उन 7 दूतों से मिलना था। न जानते हुए कि बाद में क्या घटित होगा, मैं वहां ये सोचते हुए पहुंचा कि ये मेरे जीवन का अंत है, कि उस धमाके में कोई नहीं टिक सकता, और मुझे निश्चय है कि आप सब उस कथा को जानते हैं। और फिर उस सबीनो कैनियन में एक सुबह इस प्रकार से, जबकि प्रार्थना में था, वहाँ एक तलवार मेरे हाथ में आ गई और कहा, ये वचन है और वचन की तलवार। बाद में जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, स्वर्गदूत प्रकट हुए, और उस समय एक बड़ा प्रकाश पुंज वहाँ रह गया जहाँ मैं खड़ा था, और आकाश में 30 मील ऊंचा चला गया और गोला बनाया जैसे कि स्वर्गदूतों के पंख, और आकाश में पैरामिड का सा रूप बन गया उन्हीं स्वर्गदूतों के झुंड से जो प्रकट हुए थे। विज्ञान ने चित्र उतारा वहाँ मेक्सिको से, जैसे कि ये उत्तरी एरिजोना से चला जहाँ की पवित्र आत्मा ने कहा मैं खड़ा हूँगा, टूसान से 40 मील उत्तर पश्चिम, और ये हवा में चला गया और लाइफ पत्रिका ने चित्र लिए वातावरण में कुछ भेदपूर्ण, जहाँ की नमी नहीं हो सकती, जहाँ किसी भी चीज की भाप नहीं हो सकती, 30 मील ऊंचा और 27 मील चौड़ा, ठीक जहाँ स्वर्गदूत थे वहाँ से ही आया। अब उन्होंने जानने के लिए पूछा, विज्ञान उनमें से एक टूसान में था, जानना चाहते थे कि इसका कोई अभिप्राय है, परंतु मैंने उन्हें नहीं बताया। आप सब ये जानते हैं, आपको पहले ही बता दिया, परंतु ये उनके लिए नहीं था, ये आपके लिए था। और इस प्रकार से वो वहाँ मुझसे बोला, सात मोहरें खोली जाएंगी, सात भेद बाइबल की सात सतह के भेद जो कि जगत की उत्पत्ति से बंद थे प्रकट किए जाएंगे। और हम यद्यपि नम्र छोटा झुंड सारे संसार से तुलना की गई है, हमने इन आशीषों में आनंद लिया और उन भेदों को सुनते हुए विवाह और तलाक, सर्पवंश और ये सारे भिन्न भिन्न प्रश्न हम पर पूरी रीति से प्रकट किए गए, मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर के द्वारा हम पर पूरी रीति से प्रकट किया गया, जिसमें कि वे सात मोहरें खोली कि कलीसिया क्या थी, ये कैसे आरंभ में मसीह के अंदर थी और कैसे अंत के दिनों में ये प्रकट होगी। और जैसे कि हुआ, हमारे पास बाहर बोर्ड पर कुछ चित्र लगे हुए हैं, परंतु फिर मेरे पास यहाँ वे चित्र हैं, यदि आप ध्यान दें, जैसा कि लाइफ पत्रिका में थे। परंतु मुझे आश्चर्य होगा यदि यहाँ दिखाई पड़ने वाले श्रोताओं ने कभी इन चित्रों को देखा है उस प्रकार से जैसे होना चाहिए। आपको स्मरण है जब ये दर्शन आया, मैं प्रचार कर रहा था इस प्रकाशित वाक्य एक की पुस्तक के विषय में, जहाँ पुराने न्यायी, जहाँ हम यीशु को प्रकाशित वाक्य एक में देखते हैं, जब हमने सात मोहरें खोलनी आरंभ की, यानी बल्कि सात कलीसियाई काल सात मोहरों के खुलने से थोड़ा पहले, मसीह अपने ऊन के समान सफेद बालों के साथ, और मैंने इसका वर्णन आपसे किया कि पुराने अंग्रेजी जज, बहुत पुराने जज, जब वे न्याय के पद पर जाते कि शपथ लें कि वे सर्वोच्च अधिकार दिया जाए, वे सफेद बालों की टोपी अपने सिरों पर पहनते अपना सर्वोच्च अधिकार प्रकट करने के लिए। यदि आप चित्र को इस प्रकार से घुमा दें और देखें, आप श्रोता मंडली में से इसे देख सकते हैं कि ये मसीह है। देखिए, उसकी आंखें यहाँ पर हैं, जितनी सिद्ध वो हो सकती हैं, सफेद बालों वाली टोपी पहने हुए सर्वोच्च देवत्व और सारे स्वर्ग और पृथ्वी का न्यायी। क्या आप उसकी आंखें, नाक, उसका मुंह देख सकते हैं? चित्र को इधर को घुमाएं, जिस प्रकार से उनके पास था, इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसे होना चाहिए, और आप क्या आप देख सकते हैं? वो सर्वोच्च न्यायी है, कोई और नहीं, केवल वो। और ये फिर से सिद्ध पहचान, एक प्रमाण कि ये संदेश सत्य है, ये सत्य है, और उसे तीसरा व्यक्ति नहीं बनाते, परंतु वही व्यक्ति सफेद के साथ। देखिए, आप उसके चेहरे को काला देखते हैं, उसकी दाढ़ी, उसकी आंखें, और ध्यान दें, वो देख रहा है और उसके पास से ये ज्योति आ रही है सीधे हाथ की ओर से, जिधर वो देख रहा है, और क्रूस पर यही जिधर उसने देखा, सीधी तरफ जहां उसने पापियों को क्षमा किया। उसके पुनरुत्थान की ज्योति में हम अब भी उसके नाम में आगे बढ़ रहे हैं। आज की प्रातः हमारी इच्छा है कि हमारे पास इस घटनाओं के लिए अधिक समय होता, जो किसी भी संदेह से परे है, पिछले 30 वर्षों से प्रमाणित हो रही है, या 35 वर्षों से, ठीक यहाँ इस कलीसिया में, ठीक यहाँ नदी पर, जब वो ज्योति 1933 में जेफरसन विले में उतरी और उन वचनों को बोला, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया, तेरा संदेश दूसरे के आगे आगे चलेगा। हम लोग अंत समय में हैं और हम ये देखते हैं। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं क्योंकि ये सारी पृथ्वी पर नहीं फैला। संभव है किसी समय हमें इसकी व्याख्या करने का अवसर मिलेगा, यदि परमेश्वर ने चाहा। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबलों में निकालें, जैसा कि हमने सदा विश्वास किया है कि वचन पहले आना चाहिए, वचन को पढ़ने के द्वारा। मैं सदा इसे पढ़ता हूं क्योंकि ये मेरा वचन मनुष्य का वचन है, ये असफल हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होगा। अब हम पवित्र शास्त्र में से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप पहले तीन स्थानों में से बाइबल में से जिन्हें मैंने पढ़ने के लिए चुना है, उनमें से एक प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 17वां और 18वां पद, ये जहाँ पर वो अपने ऊन जैसे सफेद बालों के साथ प्रकट हुआ और उसके पांव पीतल के से। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बाइबलों में से निकाल लें रोमियो 8:11। मैंने इसे प्रातः चुना है पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए तीन स्थान अपने आज के संदेश के लिए, पुनरुत्थान के लिए प्रभु ने मेरे हृदय पर रखा है। और फिर मैं मरकुस 16:1-2 भी चाहता हूँ, वहाँ से मैं भी अपना मूल पाठ निकालूंगा। अब प्रकाशित वाक्य 1:18 हम इन वचनों को पढ़ते हैं, 17 और 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं जो जीवता हूँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, आमीन, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। और रोमियो के 8वें अध्याय में 11वां पद हम इसे पढ़ते हैं, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और मरकुस का 16वां अध्याय पुनरुत्थान का अध्याय, 16वां अध्याय पहला और दूसरा पद, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकल ही रहा था वे कब्र पर आईं। अब आज प्रातः मेरा विषय जो मैं मूल पाठ लेना चाहता हूँ ये सूर्य का उदित होना है, और विषय के लिए मैं प्रयोग करना चाहता हूँ जिलाने वाली सामर्थ। अब आप जानते हैं, संभवतः आप रेडियो पर सुन रहे होंगे और विभिन्न सेवक बोलते हैं, और हमारे अच्छे भाई नेविल आज प्रातः ईस्टर के विषय पुनरुत्थान पर बोल रहे थे, और मैंने सोचा हो सकता है मैं इसे दूसरे रास्ते से लूं, भिन्न होने के लिए नहीं परंतु थोड़ा और उसमें जोड़ने को दूसरे कोण से आपके लिए। पवित्र वचन हर कोण से आप पवित्र वचन के साथ जाते हैं, ये सदा यीशु मसीह को ही घोषित करता है, आप इससे अलग नहीं हो सकते, जो भी है ये सदा उसकी घोषणा करता है। अब जैसे कि आज संसार इस स्मृति सभा में या कम से कम संयुक्त राज्यों में और पृथ्वी की इस ओर इस प्रातः सारे के सारे आराधनालयों में इस यादगार को मना रहे हैं, उस महानतम उद्घोषणा को जो कभी मनुष्य में हुई, मैं सोचता हूँ जब वो एक बचाने वाले के समान मरा या एक छोटे बालक के समान जब वो जन्मा था, वो यहाँ नहीं हो सकता था, ऐसा ना होता तो वो पृथ्वी पर नहीं आ रहा होता, और जब वो मरा निश्चित ही उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। परंतु तब भी बहुत से छोटे अच्छे बालक जन्मे और बहुत से लोग हुए जिन्होंने दुख उठाए और एक उद्देश्य के लिए मर गए, परंतु कोई ऐसा नहीं हुआ कि आज के दिन तक जिसने अपने आप को फिर से जिला लिया हो। अब ये इतिहास का एक महान सप्ताह है, सारे समयों से ये एक महान मनाने का समय है। जो उसने कहा उसने वही सिद्ध किया। मनुष्य बातें कर सकता है, परंतु फिर भी उन पर एकदम ठीक विश्वास नहीं किया जा सकता पूरी रीति से, जब तक कि ये सच सिद्ध ना हो। और जैसे परमेश्वर जिसने कहा सारी बातों को सिद्ध किया, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, वो आपको वैसा करने को नहीं कहेगा जो उसने स्वयं ना किया हो। इसलिए उसने सिद्ध किया ये कौन था जो हमारे पापों के लिए मरा। और अब ये केवल एक याद करने का दिन नहीं, इन सब अच्छे ईस्टर के फूल और ईस्टर के टोप और गुलाबी खरगोश और आदि आदि जो हमारे पास है, पवित्र उत्सव जो कि ठीक है, परंतु वास्तव में ये वास्तविक चीज नहीं है जो होनी है। जैसा कि आज लोग कहते हैं कि हमें वर्ष में एक बार पांव धोने चाहिए, वीरवार को और शुक्रवार को प्रभु भोज लेना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं वे विवाद करते हैं कि ये इस दिन, उस दिन, या सबत के दिन, या सप्ताह के पहले दिन, या ये सारी बातें बस रिवाज हैं। आपका क्या भला होगा कि आपके रोजों के दिनों हो या ना हो, यदि आप में जीवन नहीं। ये केवल एक यादगार है जिसके विरोध में तो कुछ नहीं, परंतु वे निश्चित तौर पर इस रीति रिवाजों को करते हैं, परंतु विशेष बात को छोड़ देते हैं। शैतान को चिंता नहीं कि आप कितने धार्मिक या आप अपनी शिक्षा में कितने सही हैं। यदि आप उस जीवन से चूक जाते हैं तो जो भी है, आप ऊपर नहीं आएंगे। कोई मतलब नहीं कितने धार्मिक, कितने भले, आपका संबंध कितनी कलीसियाओं से है, इन बातों से कुछ नहीं होता जब तक आप नया जन्म ना पाएं। इसलिए यदि परमेश्वर ने यीशु को मरुओं में से जिलाया, तो क्या उसने उसे स्मरण करने के लिए जिलाया? क्या ये पुनरुत्थान की सुबह केवल वर्ष में एक दिन या एक विशेष दिन जो हम ये मनाते हैं, या हम उसके इस पुनरुत्थान का लाभ उठाने वाले हैं? मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? आपके लिए इसका क्या अर्थ है? अब हम विश्वास से विश्वास करते हैं कि वो मरुओं में से जी उठा, परंतु इसका मुझसे क्या मतलब? ये 2000 वर्षों पहले था। अब इस मूल पाठ को खोजने के लिए, जैसे कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है उस सुई से जो नर्स ने मेरे लगाई कि मैं विदेश जाऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों में मुझे मेरे पुत्र को ये सुइयां लगवानी हैं, और हैजा, पीला ज्वर और आदि आदि, मैं थका हुआ हूं, मुझे बीमार बना दिया, जो कि कैसर चाहता है कि हमें दूसरे राष्ट्रों में जाने से पहले ये सुइयां लगवानी हैं। और उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, परंतु जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और जैसा कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, संदेशा कर रहा था कि मैं इस प्रतीक्षा करने वाली मंडली से इस सुबह क्या बोलूं, जिसके लिए मैं धन्यवादित हूँ, और वे पुरुष और महिलाएं जो अपना जीवन उस पर रखते हैं जो आप बोलेंगे, मुझे ये कैसे करना चाहिए, मैं मूल पाठ के लिए क्या लूं? और फिर जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, लगभग सोया सा, मेरे दरवाजे से आवाज निकली घर के सामने बाहर। वहाँ कोई नहीं था सिवाय मेरे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैंने सुना, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद मेरे डेन कमरे का दरवाजा, जहाँ मैं अध्ययन करता हूँ, उससे आवाज हुई। कोई दरवाजे को हिलाया जा रहा था। मैं दरवाजे पे गया और दरवाजा खोला। मुझे आश्चर्य हुआ, एक सुंदर छोटी सी लड़की जो कि ईस्टर के फूल जैसी दिखी, जो वहाँ बैठी हुई मेरी ओर देख रही है, उसने मुझे एक कार्ड दिया और ये एक निसंदेह मुझे अंदाजा था जब मैं घर पहुँचूंगा वहाँ ईस्टर का एक कार्ड होगा और आदि आदि, परंतु घर पर केवल एक ही मिला क्योंकि घर छोड़ रहा था। और उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये मेरे पिता की ओर से और मेरी ओर से है, वो मैं के लिए पक्का होना चाहती थी, वो उसमें है। उसका बाएं के दर्द वाला पिता पहिए वाली कुर्सी में, उसने ये कार्ड भेजा। मैंने लेकर और उस छोटी प्रिय को धन्यवाद किया और वो घूमी और दरवाजे से चली गई। मैंने कार्ड खोला और उस कार्ड के स्वरूप मैंने अपना मूल पाठ निकाला, क्योंकि कार्ड पर संत मरकुस 16:1-2 प्रकाशमान हो सूर्य उग रहा था। तब मैंने इस पर सोचा और फिर वो विषय जिला देना, यीशु मसीह का मरुओं में से जी उठना, मैंने अपना विषय निकाला। अब सूर्य के उदित होने पर एक समय था जब संसार घोर अंधकार में था, बिना रूप के बेडौल था, और ये सारी की सारी जल से ढकी थी और अंधकार में निराश धुंधलाई वातावरण, और परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था और कहा, उजियाला हो जा। ये करने का परमेश्वर का कारण था, क्योंकि गहरे जल के नीचे वहाँ बीज थे जो उसने डाले थे, और इसे जीवित करने के लिए इसे सूर्य का उजियाला पाना ही था। और पहला उजियाला जो कभी पृथ्वी पर पड़ा वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन था। उसने कहा, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। उसने अंधकार को उजियाले में बदल दिया ताकि आनंद की सृष्टि की जाए और पृथ्वी पर जीवन हो। तब परमेश्वर का आत्मा जैसे कि ये प्रेम और करुणा से मंडराया उस महान दिन में, पृथ्वी के सृष्टि के पहले दिन की प्रातः, सूर्य उदित हुआ और अपनी सारी किरणें फैला दी और जल को पृथ्वी पर से सुखा दिया और इसके ऊपर एक वातावरण बना दिया। और ये पहली बार ये आनंद का लाना था और बीज के द्वारा पृथ्वी पर जीवन लाना, ये एक महान घड़ी थी। परंतु ओ, ये कुछ नहीं था कि सूर्य उगा, जैसे कि ईस्टर की सुबह सूर्य उदय हुआ। इस बार सूर्य का आकाश में आना ये महान सूर्य उदय को लेकर आया जो कभी हुआ, क्योंकि एक महान सुसमाचार इस सूर्य उदय के साथ आया, उससे जो आरंभ में सूर्य उदय हुआ था। ये सूर्य उदय एक समाचार लेकर आया कि वो जी उठा है, वो मृतकों में से जी उठा है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी, वो मरुओं में से जी उठा। उत्पत्ति में पहली बार सूर्य उदित हुआ, ये एक संदेश ला रहा था कि इस पृथ्वी पर जीवन होगा, मरणहार जीवन। परंतु इस बार जब सूर्य उगा, वहाँ दो सूर्यों का उदय हुआ, दूसरा पुत्र उठा। केवल सूर्य ही नहीं उगा, ये पुत्र उदित हुआ। ये केवल SUN नहीं उठा, ये SON उठा कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए वंश के लिए अनंत जीवन लाया, जो कि पहले से ठहराए गए थे उसने पृथ्वी पर पड़े देखा था। वनस्पति जीवन वहाँ आरंभ से बिना सूर्य SUN के नहीं सकती थी, इससे अधिक नहीं। आज जब परमेश्वर के पुत्र एसओएनसन इस पृथ्वी पर ये पुत्र की ज्योति को लेते हैं ताकि उन्हें अनंत जीवन में ले आए। उसके चुने हुए जिन्हें उसने इस पृथ्वी के रचने से पहले जाना, उसने उन्हें स्वयं पृथ्वी के रचने से पहले चुना। और ईस्टर की प्रातः तब इसी धूल में कहीं उस समय हमारी देहें पड़ी हुई थीं, क्योंकि हम पृथ्वी की धूल हैं। और स्वर्ग में एक स्मृति की पुस्तक थी और उसके गुण उसमें थे, ये जानते हुए क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र जी उठा है, ये हर पुत्र को भी जीवन में उठाएगा जो इस महान समय के लिए पहले से ठहराया हुआ है। वो जानता था कि ये है, और ये क्या ही महिमा में सूर्य उदय हुआ जो तब से आरंभ हुआ था, उस समय पहली बार सुबह हुई थी। अब ईस्टर की ये महान मोहर को तोड़ना, अब आज हमारे पास तपेदिक की ईस्टर मोहर है। लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं और इसके पक्ष में ढेर पैसे उगाने के लिए, ताकि डॉक्टर और शरीर विज्ञान इस पर कुछ कार्य करें, ताकि तपेदिक को समाप्त करने में सहायक हो। वे मोहर हैं जिसे हम ईस्टर मोहर कहते हैं, जब हम एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। परंतु जब हम संदेश प्राप्त करते हैं कि वो मोहर तोड़ दी गई है, क्योंकि मोहर जो अपने अंदर एक संदेश लिए हुए थी, और अब सच्ची ईस्टर मोहर इस सूर्य उदय पर तोड़ी गई थी और मृत्यु के बाद जीवन का भेद प्रकट किया गया था। इसके पहले हम नहीं जानते थे। संसार अंधकार में घिरा हुआ था, चारों ओर घिरा हुआ मनुष्य का संशय, लोगों के हृदयों में मत थे, रिवाज बना लिए। मनुष्य ने मूर्तियों की पूजा की, उन्होंने सूर्य की उपासना की, उन्होंने सब प्रकार के देवताओं की उपासना की, और सब प्रकार के लोगों ने दावे किए, वे सब कब्र में चले गए और वहीं रह गए। परंतु वास्तविक मोहर तोड़ी गई, और वो एक वो जो हमारे समान रहा और जैसे हम मरते हैं मरा, और मृतकों में से जी उठा। क्या ही सुबह थी संसार के इतिहास में, ऐसी सुबह कभी नहीं हुई। भेद खुल गया कि वो पुनरुत्थान और जीवन दोनों है। और उसने कहा, जब वो उस प्रातः बाहर आया, क्योंकि मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहो। केवल वही इसका लाभ उठाने वाला नहीं, परंतु वो सारा वंश जो परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा में विश्राम कर रहा है, जीवन के इस पुनरुत्थान के लाभ का भागीदार हुआ, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तो तुम भी जियोगे। ये मोहर का तोड़ना था, क्योंकि उसे जिलाया गया था, इसलिए प्रत्येक जो मसीह में है उसके साथ जिलाया जाएगा। इस महिमा में सूर्य उदय पर परमेश्वर ने ये सिद्ध कर दिया या अपना वचन प्रमाणित किया। सारे संशय और संदेह लोगों के मस्तिष्क से हटा दिए, क्योंकि यहाँ वो था जो कभी जीवित था, खाया पिया और मानव जात की संगति की, जिसने कहा, मुझे अधिकार है कि मैं अपना जीवन दे दूं, मुझे अधिकार है कि इसे फिर से उठा खड़ा करूं। और उसने ये केवल कोई कथन नहीं बोला, परंतु उसने इसे सत्य सिद्ध कर दिया। ओ, क्या ही शानदार बात है ये। आज प्रातः मैं निश्चित हूँ, यहाँ तक कि हम जो उसका विश्वास करते हैं, इसे समझ नहीं सकते कि ये कितनी महान बात थी, क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो हम भी मरे हुओं में से जी उठे, क्योंकि हम उसमें थे। अब ध्यान दें, जैसे कि धुंधलके ने पृथ्वी को ढांप रखा था और बीज बिना सूर्य के निकले जीवित नहीं हो सकते थे, और धुंधलके ने पृथ्वी को ढांप रखा था, और अब पुत्र जी उठा है और सारा धुंधलाहट उसकी ज्योति से धुल गई है, जैसे कि ये राष्ट्रों पर फैल गया लोगों में कि वो यहाँ पर नहीं है परंतु वो जी उठा है। क्या ही वक्तव्य है। उसने अपने वचन को सिद्ध कर दिया, उसने इसे सही सत्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि अब उसने मृत्यु को, नरक और कब्र को जीत लिया। शैतान की त्रिएकता, मृत्यु, नरक और कब्र, क्योंकि शैतान मृत्यु का लेखक है और वो नरक का अधिकारी है और कब्र का भी, और ये शैतान की त्रिएकता थी। एक ही बात के कारण ये हुआ, वो मृत्यु थी। मृत्यु, तू कब्र में चली जा, और पापी होने के कारण आप नरक में जाते हैं। सब कुछ वही एक चीज, शैतान की त्रिएकता, जो कि मृत्यु है, जिसने मनुष्य को इन सारे वर्षों में बंधन में रखा। परंतु अब परमेश्वर की सच्ची त्रिएकता एक ही मसीह में प्रकट हो रही है, जो कि जीवन था और मोहरों को तोड़ दिया और शत्रु को जीत लिया और जी उठा। वो एक और जीवता परमेश्वर, मैं वो हूँ जो मर गया था और मैं सदा के लिए जीवित हूँ और मृत्यु और नरक की चाबी रखता है। परमेश्वर एक में मनुष्य बना और बीच रहा और हर शत्रु को जीत लिया और सिद्ध कर दिया कि शैतान की त्रिएकता को जीत लिया और परमेश्वर की वो त्रिएकता को प्रकट किया, क्योंकि केवल परमेश्वर के पास सामर्थ है कि जीवन को फिर से वापस लाए। वो इमैनुएल था, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, वो अब मत्ती 27वें अध्याय का दावा कर सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं, मैं तुम्हें अपना गवाह बनाकर सारे संसार में भेजता हूँ। उसने दोनों को, मृत्यु, नरक और कब्र को जीत लिया है। उसने केवल यही नहीं किया, और पृथ्वी और आकाश के सारे अधिकार की जय के साथ बाहर आया। वो सारा जो पिता में था, वो सारा जो पवित्र आत्मा था, और वो सब कुछ कभी हुआ था उसमें था। पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हर चीज सामर्थ्य से खाली है। उसने ये जीत लिया है। अब और फिर केवल यही नहीं, उसने अपने चेलों के पास वचन को भेजा, उस पर विश्वास करने वालों को, डरो नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ जो मर गया था और फिर से सदा काल तक के लिए जीवित हूँ, और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं। मैंने ये पहले ही जीत लिया है, और मत डरो, क्योंकि प्रत्येक पहले से ठहराया हुआ, पहले से जाना हुआ परमेश्वर का बीज जीवन में आएगा, जब ये महिमामय सुसमाचार का उजियाला सारी पृथ्वी पर फैलेगा। हर युग में ये फसल उगाएगा जिसे परमेश्वर ने करने के लिए ठहराया है। वो मृतकों में से जी उठा है। ओ, क्या ही अद्भुत बात है, मैं जीवित हूँ या जीवित हो गया हूँ। वचन का अर्थ, शब्द क्विकेंड का ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ, कुछ जो मृत्यु के पश्चात जीवित हुआ, जैसे वो बीज जो भूमि में चला गया, इसे मरना है, बीज का हर अंश, इसे सड़ना है, बीज के हर अंश को, हर जीवन के हर अंश को जो बीज में था, इसे फिर से वापस आना है। वो फिर जीवित हुआ, केवल यही नहीं, उसी जीवन को भेजेगा जिसने मुझे जिलाया, वो सामर्थ जिसने मुझे कब्र से जिलाया, मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा कि तुम्हें जिलाए, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। लूका का 24वां अध्याय 49वां पद, उसने कहा, देखो मैं पिता की प्रतिज्ञा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, परंतु तुम ठहरे रहो या प्रतीक्षा करो यरूशलेम नगर में, जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ न मिले। केवल दिखाने के लिए ये नहीं किया, इसमें से सारे लाभ निकाल लिए, परंतु उसने इन लाभों को बांटा। वो छुड़ाने आया या जीवन लाने को, उन पहले से ठहराए हुए बीज के लिए जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले देखा और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, और यहाँ वे पृथ्वी पर आए बिना आशा के। वो केवल आशीष देने के लिए नहीं आया, परंतु उन आशीषों को पहले से ठहराए हुओं में प्रत्येक बीज को बांटने। अब यदि बीज पृथ्वी पर नहीं था तो ये जी नहीं सकता था, इसे पृथ्वी पर होना ही था और अंकुरित भी हुआ था। कोई मतलब नहीं कितने समय तक ये अंधकार में रहा, ये ऊपर आएगा जब SON सन पुत्र इसके ऊपर चमकेगा। अब ध्यान दें, वो इसे हमसे बांटने आया। कोई आश्चर्य नहीं कि सुसमाचार एक अच्छी खबर है। गॉस्पल का अर्थ सुसमाचार है। सुसमाचार क्या? यदि एक मनुष्य हमारे लिए मरा, ये अच्छा समाचार है। यदि मसीह जन्मा, ये अच्छा समाचार है। परंतु ऐसा समाचार, इस प्रकार का समाचार कभी नहीं हुआ कि वो जिसने प्रतिज्ञा दी, उसने प्रतिज्ञा की पुष्टि की कि वो सदा तक के लिए जीवित है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथों में हैं। सारी धुंधलाहट समाप्त हो गई। अब कोई धुंधल का सब छट गया क्योंकि पुत्र कब्र से बाहर था। ये नहीं था वो आएगा या वो आ सकता है, वो पहले ही आ चुका। सुसमाचार, अच्छा समाचार। ध्यान दें, यही संदेश जो सुसमाचार का है स्वयं में लोगों को ये सिद्ध करता है कि वो जी उठा है। जाओ मेरे चेलों को बताओ कि मैं मरुओं में से जी उठा हूँ और मैं उनसे मिलूंगा कि उनको पक्का कर दूं। ओ परमेश्वर, कैसे इस अंत के दिनों में फिर से सारी पृथ्वी पर उजियाला होगा और मैं अपने चेलों पर सिद्ध कर दूंगा। जाकर उन्हें बता दो कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं रीति रिवाज नहीं हूँ, परंतु मैं जीवता मसीह हूँ। मैं उनसे मिलूंगा। मेरे चेलों के पास ये संदेश ले जाओ कि मैं मरुओं में से जी उठा हूँ। सुसमाचार, अच्छा समाचार। आप कहते हैं क्या ये सही है? इब्रानियों 13:8 ने कहा वो कल आज और सर्वदा एक सा है। हम उसके लाभग्राही उसके जीवन को अब अपने में सिद्ध करते हैं। उसके जीवन के लाभग्राही, वो जीवन कभी इस प्रकार का जीवन नहीं जिया गया। वो परमेश्वर का पुत्र था और वो मरा और इसने उसे बंद कर दिया। परंतु जब वो फिर जी उठा मरुओं में से उस ईस्टर की सुबह, तब हम उसके दासों के समान उसके द्वारा अधिकार प्राप्त किया कि सारे संसार में जाओ और हर व्यक्ति को ये अच्छा समाचार बताओ कि वो जीवित है। और हम केवल वचन के द्वारा इसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये लिखा है, सुसमाचार केवल वचन के द्वारा नहीं आया, परंतु सामर्थ और पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा ये सिद्ध करने के लिए कि वो जीवित है। अब यदि कोई दूसरा सुसमाचार है, जैसे कि पौलुस ने एक झुंड से कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे, जबकि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु एक बनावटी विश्वास का सुसमाचार, नामधारी कल्पना सुसमाचार से फिरने लगे। और क्योंकि मैं जीवता हूँ, तुम भी जीवित रहो, और मैं तुम में जीता हूँ, और जो काम मैं करता हूँ, यहूना 14:12, जो काम मैं करता हूँ वे मुझे तुम में प्रमाणित करोगे। ओ क्या ही संदेश है! कोई आश्चर्य नहीं, हमारे पास धर्म विज्ञान का अंधेरा संसार था, परंतु सांझ के समय फिर उजियाला आएगा। सांझ के समय एक पुनरुत्थान होगा, सांझ के समय उजियाला होगा। अब सुसमाचार की सुगंध जो भेजा गया, वो मरुओं में से जी उठा। हम उसके लाभग्राही हैं, हमने उसके साथ पुनरुत्थान में भागी हुए हैं, उससे लाभ पाया संसार पे सिद्ध करने के द्वारा कि वो जीवित है। हम इसे केवल वचन के द्वारा नहीं कर सकते, हम इसे किसी रीति रिवाज के द्वारा नहीं कर सकते, हम केवल ठीक परावर्तित करते हैं कि हमारा संकेत क्या है। मुझे आज भय है कि हम में से बहुत से लोगों को मसीह के पास नहीं ले जा रहे हैं, हम उन्हें परिकल्पनाओं के द्वारा कलीसियाओं में ले जा रहे हैं, परंतु हमें उन्हें मसीह के पास ले जाना है। केवल वही जिसके पास जीवन है, वो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और यदि उस मनुष्य का जीवन जो मर गया आप में प्रकट हुआ है, तो आप वैसा ही जीवन जिएंगे जो उसने जिया। यदि मनुष्य का लहू निश्चित प्रकार का है और यदि आप एक मनुष्य से लहू लेते हैं और उसे दूसरे मनुष्य से बदलते हैं तो निश्चय ही उसका लहू भी उसी प्रकार का है। यदि आपकी आत्मा जो आप में है मृत समझी जाए और आप उस जीवन से अभिषिक्त हैं जो मसीह में था आप पर है। रोमियो 8:11 ने कहा, यदि वो आत्मा जिसने मसीह को मरुओं में से जिलाया तुम में वास करता है तो ये तुम्हारी मरणहार देहों को भी जिलाएगा। वही जीवन, वही सामर्थ्य, वही लाभ जो उसके पास इस पृथ्वी पर थे परमेश्वर से, उसने आपको छुड़ा लिया एक बीज जो परमेश्वर के द्वारा पहले से जाना गया, जिसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में संसार के रचने से पहले था। पुनरुत्थान के सुसमाचार की ज्योति वचन की पुष्टि है। हमने कैसे जाना कि वो मसीह था? क्योंकि जिस विषय में उसने बात की उसने वो सिद्ध किया। मैं कैसे इस घड़ी के संदेश को जानूं? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसने वो सिद्ध किया और वो उस विषय में बात करता है। ये प्रमाण कि हम उसके संग उसके पुनरुत्थान में लाभग्राही हैं, जिस विषय में उसने बात की उसने वो सिद्ध किया। उसने मसीह में क्या करने की प्रतिज्ञा की है उसने पुनरुत्थान में प्रमाणित कर दिया। जो प्रतिज्ञा उसने मूसा के दिनों में करने को की उसने वो सिद्ध किया। जो उसने हनोक के दिनों में प्रतिज्ञा की उसने सिद्ध किया। चेलों के सारे दिनों में उसने ये सिद्ध किया। अब इस दिन में जो उसने कहा वही सिद्ध किया, क्योंकि वे उस बीज के भाग हैं जिसका प्रतिनिधित्व जीवन की पुस्तक में है कि वो उन्हें फिर वापस परमेश्वर की ओर छुड़ाने के लिए आया। ओ क्या ही संदेश है! ईस्टर की सुबह वो केवल जी ही नहीं उठा परंतु उसके लाभग्राही उसके संग जी उठे। वे उसके क्रूस पर चढ़ने में उसके संग थे, उसके पुनरुत्थान में वे उसके अंदर थे। हम उसके लाभग्राही हैं। अंधकार में मरने के बाद हम जिलाए गए। अविश्वास का अंधकार में संसार, जहां कलीसियाएं और नामधारी आदि ने हमें बाहर निकाल दिया और हमारे अंदर कुछ हमें बुला रहा था, ओ हमें परमेश्वर चाहिए, हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन और जो भी हैं सदस्य बने और फिर भी वहाँ कुछ गड़बड़ थी, हमें अभी तक ये नहीं मिला। और अचानक से जबकि हम अंधकार में टटोल रहे थे, महान पुनरुत्थान हमारे पास परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा में प्रकट हो गया। जैसे कि वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा का प्रकटीकरण है, मैं उसका प्राण अधोलोक में न छोड़ूंगा, न ही अपने पवित्र को सड़ने दूंगा। उसने ये प्रकट कर दिया, परमेश्वर का हर वचन जिसकी उससे प्रतिज्ञा की गई, वो ईस्टर की प्रातः जी उठा उसने सिद्ध कर दिया। अब वे जो अंधकार में टटोलते फिर रहे थे और भटक रहे थे, यदि उन्हें इस दिन में पांव धोने चाहिए या वे किसी एक दिन को माने या कुछ निश्चित नियमों को माने, तो वे सारी चीजें बीत गईं, क्योंकि एक महिमामय पुनरुत्थान है जिसने मनुष्य के बनाए हुए चीजों को, जो मनुष्य ने कभी बनाई, मनुष्य निर्मित हर तर्क को चुनौती दे दी। कभी कोई मनुष्य नहीं हुआ इस समय तक कि एक मनुष्य जो अपना जीवन दे सकता और फिर उसे वापस ले सकता है। उसने वैज्ञानिक प्रमाण को जो उनके पास था जीवित होकर झुठला दिया। जब वे कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं है, कि उसकी सामर्थ वैसी नहीं है, उसका सुसमाचार वैसा वो ही नहीं है, जबकि बाइबल कहती है वो एक सा है। परमेश्वर ने हर नामधारी, हर मतसार को चुनौती दी और वो अपने पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा दी और हमें प्रमाणित करके दिखाया कि वो जीवित है। हम उसके पुनरुत्थान के लाभग्राही हैं। संसार में मरने के पश्चात पाप और अपराधों में से जिलाए गए, उसने उसके संग हमें जिलाया और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। उसका आत्मा उसके उसी जीवन को फिर से पृथ्वी पर लाता है। यदि परमेश्वर के आत्मा ने जिसने मसीह को जिलाया वो देह, अभिषिक्त देह, यदि परमेश्वर के आत्मा ने उस देह को इस प्रकार से अभिषिक्त किया, जब वो बीज भूमि में गिरा उसने उसे वहाँ पड़ा रहने नहीं दिया, नहीं, उसने उसे जिलाया और उठा खड़ा किया। वही आत्मा उन्हीं कार्यों के द्वारा, उसी सामर्थ, उन्हीं चिन्हों के द्वारा आप में होने से ये आपको भी जिलाएगा। मैं यहाँ आपके लिए छोटा सा वचन पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक और पवित्र वचन निकालें। मैंने यहाँ लिख रखा है, ये आपकी थोड़ी सहायता कर सकता है। ये लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय 9 से 11वें पद तक ध्यान से सुने। व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। सुनिए, ये सारी चीजें अब प्रतीक हैं और हम यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे कि इस प्रतीक में जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, उस स्थान को, वो पद जो मैंने तुम्हें दिया है। अब आप इसराइली बालकों से बातें करते हैं, जब तुम इस निश्चित स्थान में पहुंच जाओ जिसकी मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें ले आऊंगा, जब तुम उस देश में पहुंचो। अब यहाँ स्वाभाविक रीति से बोल रहा है जो आत्मिक का प्रतीक है, और उसमें के खेत काटो, तुमने वो पा लिया जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। यदि कोई पवित्र धर्म विधि होगी तो वो सबत के दिन होगी, जो कि सप्ताह का 7वां दिन है, जो कि शनिवार है। परंतु आपने ध्यान दिया कि इस स्मरण विधि में कि इसे सप्ताह के पहले दिन हलाना, पूला जो कि आपके बीज का पहला है जो आपने बोया, जब ये उगा और पक गया, आपने इस पूले को काटा और याजक के पास ले गए और उसे लेने दिया और प्रभु के सामने हिलाया आपकी स्वीकृति के लिए कि आप स्वीकार किए गए। अब अपने पूले के साथ आए और उसे प्रभु के सामने हिलाना था, सबत पर नहीं, 7वें दिन, परंतु पहले दिन, जिसे हम रविवार कहते हैं, SUNDAY, संडे। ठीक है, ये रोमन शब्द है जिसे वे रविवार कहते हैं सूर्य देवता के लिए, परंतु ये कैसे बदल गया? अब ये SUN नहीं रहा, ये SON, देर, संडे। ये गेहूं का दाना परमेश्वर का पहला मरुओं में से उठा, इसे भक्त मंडली पर हिलाना है कि हम उसके वंश हैं, जो सो गए उनमें ये पहला बीज जिसे सप्ताह के पहले दिन हिलाया गया। रविवार को वो जी उठा, हिलाया गया, अलविदा, और लोगों की उपस्थिति में ऊंचे पर उठाया गया। ध्यान दें, ये परमेश्वर के गेहूं का पहला बीज था जो मरुओं में से जिलाया गया, परमेश्वर का पहला गेहूं का दाना। परमेश्वर की जिला देने वाली सामर्थ, परमेश्वर ने उसके जीवन को जिला दिया, उसे मरुओं में से जिला उठाया, और ये सोई हुओं में पहला फल हुआ, पहला फल। वो पूला था, इसी कारण उन्हें वो पहला पूला हिलाना था, क्योंकि ये पहला था जो पका, और इसे परमेश्वर के धन्यवाद के समान एक यादगार में हिलाया गया था, ये विश्वास करते हुए कि वे बाकी भी आएंगे, ये एक चिन्ह था। और आज क्योंकि वो पहला परमेश्वर का पुत्र था कि पूरी परिपक्वता में आए कि परमेश्वर में हो, वो पृथ्वी पर से तोड़ा गया और लोगों के ऊपर हिलाया गया। ओ क्या ही शानदार पाठ है, जिलाए जाने की सामर्थ के द्वारा पहला वाला। यद्यपि वो एक प्रतीक हुआ और बहुत सी बात, जैसे कि हम बाद में देखेंगे कि वो एक प्रतीक था, परंतु ये वाला वास्तव में जो सोए हुए हैं उनमें पहला फल। उसे प्रतिज्ञा के वंश पर हिलाया जो कि जीवन की प्रतिज्ञा था। वो पेंतिकोस्तल के दिन हिलाया गया जब आकाश से हिलाने जैसी आवाज आई, तेज आंधी, और लोगों के ऊपर हिलाया गया। पेंतिकोस्तो लोग जो वहाँ पेंतिकोस्त पे थे आशीष की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और कि फिर से हिलाया जाए। लूका 17:30 के अनुसार हम अनुभव करते हैं कि अंत के दिन फिर से मनुष्य के पुत्र के दिन में, उस दिन में कि मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा या लोगों पर फिर से हिलाया जाएगा। अब मनुष्य का पुत्र कौन है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और यदि सारी शिक्षा जो हमारे पास है और परमेश्वर के वचन की पुष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा चिन्हों चमत्कारों के द्वारा जो आज हम देखते हैं, आज हम देखते हैं यहाँ लूका की इस पुस्तक में जिसमें से हमने अभी उल्लेख किया, यानी लूका का 17वां अध्याय और 30वां पद और मलाकी 4 और विभिन्न पवित्र वचन जिनसे हम परिचित हैं कि वचन फिर लोगों पर हिलाया गया कि मनुष्य की मरी हुई रीतियां मर गईं और मनुष्य का पुत्र फिर से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ हमारे बीच में है और हमें जीवन दे रहा है। जैसा कि मसीह जी उठने वालों में पहला है सारे भविष्यद्वक्ताओं में से और आदि आदि, यद्यपि बहुत से स्थानों में प्रतीक है वो सोए हुए संतों में से पहला फल था। दुल्हन में मसीह के आगमन में कलीसिया से बाहर आ रहा है, वहाँ एक पूला अंत के दिनों में हिलाया ही जाना है। हो प्रभु, पूले का हिलाया जाना। पूला क्या था? पहले वाले जो परिपक्वता में आए, पहले वाले जिन्होंने सिद्ध किया कि वे गेहूं थे, उन्होंने सिद्ध किया कि ये गेहूं था। हालेलुया, मैं निश्चित हूँ कि आप समझते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। ये लोगों के ऊपर हिलाया गया, ये पहली बार ये दुल्हन के युग में सामने लाया गया उन अंधकार भरे नामधारियों में से जी उठने के लिए एक संदेश होगा कि वचन की पूरी परिपक्वता फिर से अपनी सामर्थ के साथ आई है और लोगों के ऊपर हिलाया जा रहा है उन्हीं चिन्हों आश्चर्य कर्मों के द्वारा जो उसने पहले किए। क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जियो, अपनी पत्नी से कह रहा है, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जियो। वो क्या ही पुनरुत्थान था और ये क्या ही पुनरुत्थान है कि मरुओं में से जी उठना, कि मसीह में जीवित हो जाएं, परमेश्वर की जिलाने वाली सामर्थ के द्वारा। वो उन पर हिलाया गया, वो वचन जो वो था उन पेंतिकोस्तल के दिन हिलाया गया, वचन प्रकट हुआ। अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि अंत के दिन में ये फिर से हिलाया जाना है, उदाहरण के लिए अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम जरा एक मिनट रुकिए, मैं कलीसिया को जानता हूँ कि भाई मैं भी समझे, परंतु अब उदाहरण के लिए क्या हो यदि हम इस दोपहर बाद वापस टूसान जा रहे हैं और अब हम में से हर एक बड़ी नई कैडिलैक कार में जा रहे थे और सारे बैठने की गद्दियां हिरनी की खाल की हों, मुलायम चमड़े की, बैठने में मुलायम आरामदायक, नीचे का फर्श मखमल का, स्टीयरिंग निकल किया हुआ और उस पर हीरे जड़े हुए हों, और इंजन जांचा हुआ कि बिल्कुल ठीक है और पहिए सारे बैरिंग और ग्रीस लगी हो और पहिए पंचर ना होने वाले हों और धुआं निकलने और सारा कुछ वैज्ञानिक रीति से जांचा हुआ हो और उन्हें सज्जीकरण वाले मार्ग से निकाला गया दोनों को और दोनों को तेल से भर दिया। ये तेल दौड़ने वाली सामर्थ है क्योंकि उसमें अष्टक है। परंतु अब जब आप उसे आरंभ करने जा रहे हैं, यद्यपि दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें से एक चिंगारी नहीं और कोई भी चिंगारी निकलने वाली सामर्थ। भाई आप कहते हैं कि सामर्थ तेल में है भाई ब्रैनम, परंतु मैं चिंता नहीं करता कि पेट्रोल में कितनी ताकत है जब तक कि चिंगारी नहीं निकलेगी कि सामर्थ प्रकट हो। जब तक वो सामर्थ ना हो कि पेट्रोल की पुष्टि करे, तब तक ये जल के समान है। जब तक नहीं है कोई मतलब नहीं, धर्म विज्ञानी कितना ही दावा करें, आपने अपनी कलीसिया कितनी सुसज्जित कर रखी है, आपके पास कितनी शिक्षा, कितनी बाइबल के सामान हैं, और जब तक हिलाने वाला पूला, जब तक पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर ना आए कि वचन को जिला दे। पेट्रोल वचन को दर्शाता है, ये सत्य है, परंतु आत्मा के बिना ये नहीं बढ़ेगा। हमने यांत्रिकी पर बहुत जोर डाला और गतिकी पे कुछ नहीं। इसे परमेश्वर की गतिका की सामर्थ की आवश्यकता है, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ कलीसिया पर की प्रकट करे और घटित करे कि ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल की टंकी में हो सकता है, पेट्रोल ये अब भी एक पानी है, परंतु उसका केवल एक ही प्रमाण है, ये जीवन उस पर डाला जाए और इससे ये सिद्ध हो जाए कि ये पेट्रोल है या नहीं। और जब आप नामधारी में पवित्र आत्मा डालने का यत्न करते हैं, आप वैसा ही यत्न करते हैं, आप खड़खड़ाना ही पा सकते हैं, आप अपना इंजन खराब कर लेंगे कार्बन से भरने के द्वारा। परंतु ओ, मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि 10,000 अष्टक की सामर्थ है परमेश्वर का वचन और एक पवित्र आत्मा की इसे प्रज्वलित करे और परमेश्वर की सामर्थ को मनुष्य के जीवन में जीवित करे, या एक महिला के जीवन में, या कलीसिया। अब ये दर्शाता है वहाँ जो कैडिलक कार सड़क पर है वो पवित्र आत्मा की गतिका में है, जो कि वापस आया और लोगों पर पेंतिकोस्त के दिन हिलाया गया और उसे कल, आज और सर्वदा एक सा बनाया। पहला पूला सारे भविष्यद्वक्ताओं में से होकर आया, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, सारे भविष्यद्वक्ताओं का राजा। कलीसिया थी, कलीसियाएं, दुल्हने, दुल्हने, कलीसियाएं, दुल्हन, दुल्हने, परंतु एक को आना ही था। हालेलुया, एक सच्ची दुल्हन को आना था। एक को तो आना ही था जिसके पास केवल यांत्रिकी ही नहीं, परंतु गतिका किसी की, जिसने कलीसिया को जीवित कर दिया, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आगे बढ़ी। जब तक कि हम उस स्थान पर नहीं आ जाते, जब तक हम उस स्थान को नहीं पा लेते, तो फिर पहियों पर पॉलिश करने का क्या लाभ, उसको और उठाकर चमकाने का क्या लाभ। एक धर्म विक्रय का कार्य है, जबकि उसमें कोई गतिका नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यांत्रिकी कितनी भी सिद्ध हो, गतिका तो होनी ही चाहिए, ये कार्य करे। यही जो उसने सिद्ध किया, हालेलुया, यही जो ईस्टर ने सिद्ध किया। वो केवल वचन ही नहीं था, परंतु वह स्वयं परमेश्वर था, गतिका वचन में, जिसने यीशु मसीह की देह को बनाया ठंडी अकड़ी और मरी हुई कब्र के अंदर, फिर से जीवन में ले आया और फिर जी उठा, पत्थर को लुढ़का दिया। मैं वो हूँ जो मर गया था, इतना मर गया, यहाँ तक कि सूरज ने कहा वो मर गया, चांद ने कहा वो मर गया था, सितारों ने कहा वो मर गया था, सारी प्रकृति ने कहा वो मरा, और अब सारे संसार को पहचानना था कि वो फिर से जीवित है। वो केवल यांत्रिकी ही नहीं था, परमेश्वर का वचन, वो इसे सिद्ध करने के लिए कि गतिका भी था। और जैसा कि वो दूल्हा है, दुल्हन को भी आना है, क्योंकि वो उसका भाग है, और ये सारे प्रकाशनों को प्रकट होने का परिपूर्णता हो सकता है, जो कि किसी दूसरे ने दुल्हन के विषय में कहा, ये केवल प्रकट हो सकता है। यदि ये दूल्हे से कुछ भिन्न है तो ये दुल्हन नहीं है, क्योंकि वो उसके मांस में का मांस, उसकी हड्डी में की हड्डी, उसके जीवन में का जीवन, उसके सामर्थ्य में की सामर्थ्य, वो है। जैसा कि पुरुष और स्त्री एक हैं, और स्त्री को उसके एक ओर से लिया गया, उसकी एक आत्मा ली गई, उसमें से स्त्रीत्व की आत्मा, उसके एक ओर से मांस, यांत्रिकी और गतिकी दोनों, पत्नी, उसका आत्मा और उसमें का मांस, और एक साथ रखा और यांत्रिकी और गति दोनों बनाए। जब तक कि कलीसिया या लोग, ये सारे ईस्टर के बन और धर्म क्रियाएं बड़े आराधनालय तड़क भड़क असफल हो जाती रहेंगी, जब तक कि ये कलीसिया यांत्रिकी और गतिका में न बदल जाए और परमेश्वर का आत्मा, जिसने उसे इन बातों को करने के लिए कार्यवंत किया है जो उसने की, यदि वो 16 सिलेंडर पर प्रहार करता है तो कैसी, वैसे ही दुल्हन भी। आमीन। क्योंकि उसने यूहन्ना 14:12 में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। मैं अपनी गतिका का अधिकार उसकी यांत्रिकी में दूंगा कि संसार उसको समझ खड़े होने योग्य ना होगा। मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये ईस्टर का संदेश, गतिका और यांत्रिका दोनों एक साथ। यांत्रिका बिना गतिका के बेकार है, न ही गतिका बिना यांत्रिका के। आप चीख चिल्ला रो ऊपर नीचे कूद सकते हैं, जो भी है आप चाहें, और उसके वचन का इनकार करें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप बस उस पिस्टन को घुमा रहे हैं। वहाँ आग के लिए चिंगारी लाए, परंतु चिंगारी के लिए तेल नहीं। ये तो केवल तभी ही कार्य करेगा जब तक दोनों एक साथ न आए। आमीन। इसलिए एक शांत रहेगा और दूसरा बढ़ेगा, इसमें केवल यही बात है। तभी वो दोनों एक से प्रतीत हो सकते हैं। दोनों कलीसिया होने का दावा करते हैं, दोनों दुल्हन होने का दावा करते हैं, परंतु एक के पास यांत्रिकी और गतिका होनी चाहिए, तभी ये घटित होगा। जो उसने कहा वो सत्य है, ये नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं। यांत्रिकी कितनी अच्छी है जब तक कि गतिका ना आए। जब गतिका आती है वो आग अष्टक से जो पेट्रोल में है उसके संपर्क में आता है, और जब उसमें धमाका होता है इस कारण से दहन होता है, और वो दहन हर गति को बढ़ाता है और गतिका को, क्योंकि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ये पुनरुत्थान है, ये परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ है यांत्रिकी गतिका के साथ। ध्यान दें, ये आत्मा है जो जिलाता है, ये चिंगारी जो आग है। ये पेट्रोल आग नहीं लगाता, ये चिंगारी है जो पेट्रोल को आग लगाती है, समझे। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, परंतु मेरे साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसा कि वो वचन है, ये पिता जीवित है, पिता ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे ज्वलंत किया और मुझे हर चीज में आगे बढ़ाया, मैं केवल वही करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब जैसे पिता ने मुझे भेजा, इसी प्रकार मैं तुम्हें उसी यांत्रिकी के साथ भेजता हूँ, और ये उसी गतिका से चलेगा। और उनके ये चिन्ह होंगे जो यांत्रिकी होने का दावा करते हैं, गतिका अपना स्थान लेगी। पौलुस ने कहा, सुसमाचार हमारे पास केवल शब्दों में नहीं आया, केवल पेट्रोल के द्वारा, परंतु चिंगारी के द्वारा भी, कि इसे गतिशील कर दे। आप यही हैं, ये हमारे पास इसी प्रकार से आया। ये वही आत्मा है जिसने उसे जिलाया, जो सच्चे विश्वासी को अनंत जीवन में जिलाता है। अब स्मरण रखें, संभावित अब ध्यान दें, जैसे कि हमारा समय निकल रहा है। ध्यान दें, वही आत्मा अब रोमियो 8:1। अब आइए हम इसे फिर से पढ़ें, रोमियो 8:1, और देखेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है। और रोमियो नहीं, मेरा अर्थ 8:11 है, मुझे खेद है, रोमियो 8:11 में। परंतु यदि यहाँ समस्या है, यहाँ उसकी पकड़ है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, अब आप यहाँ पर हैं। यदि दूल्हे का आत्मा दुल्हन में रहता है, जब परमेश्वर ने अपना पहला दूल्हा बनाया, उसने दूल्हे को पहले बनाया, और वो पुरुष और स्त्री दोनों था आत्मा में, उसे भूमि की मिट्टी से बनाया, उसे पदार्थ बनाने के लिए। अब ध्यान दें, जब उसने हवा को आदम में से बनाया तो उसने दूसरी मिट्टी नहीं ली, वही वचन, क्योंकि आदम बोला हुआ वचन था, उसने उसी में से लिया, और तब लिया उसके अंदर पुरुष और स्त्री आत्मा, और उसने स्त्री आत्मा आदम में से निकाल ली और उसे हवा में डाल दिया, इसलिए वो अब भी आदम की आत्मा का भाग थी, आदम का मांस। तब वो आदम की आत्मा थी, गति की, जिसने उसकी देह की यांत्री को जीवित कर दिया। इसलिए दुल्हन उसके मांस में का मांस होना चाहिए और उसकी हड्डी में की हड्डी। तो फिर कैसे मरणहार देह उसकी देह होने जा रही है, हम इसे एक मिनट में पालेंगे। ये कैसे हो गया, कैसे, ये महान रूपांतरण क्या है। ध्यान दें, अब यदि उसका आत्मा परमेश्वर का जिसने यीशु को मरुओं में से जिलाया तुम में वास करता है, वो जिससे मसीह को मरुओं में से जिलाया, अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारी मरणहार देहों को भी जिलाएगा जो तुम में बसा हुआ है। ओह प्रभु, पहले से ठहराए हुए निसंदेह, जैसे कि बीज भूमि पर पड़ा वे जिनके अंदर जीवन था उनमें से बहुत से मरे हुए थे, वे बस सड़े हुए बीज थे, जल आदि ने उन्हें जिला दिया। परंतु आप जानते हैं वहाँ एक बीज पड़ा था जो जीवन के लिए तैयार था, परमेश्वर जानता था कि वो वहाँ पर है। अब पहले से ठहराए हुए वे पहले वाले जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए गए, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने अपनों का दावा करने आता है। अब ये कठिन है और इस अच्छे वाले को समझने के लिए पक्के हो जाएं। अब जैसे सूर्य पृथ्वी के आर पार भेजा जाता है, पत्थरों को लाने के लिए नहीं जो कि मिट्टी भी है, जीवन के लिए, ये सारी मिट्टी को जीवन में लाने के लिए नहीं, परंतु मिट्टी के भाग को जो कि चारों ओर से जीवन से घिरी थी। सारे लोग मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, ओ नहीं, परंतु वे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही जीवन के लिए ठहराया, जो भूमि की मिट्टी में घर किए हुए थे, उन्हीं को वो जिलाने आया है, वे ही। अब वो मिट्टी वहाँ धूप में पड़ी है और कहती है, ओ ये बूढ़ा सूरज बहुत गर्म है। वो चट्टान कहती है, ये बूढ़ा सूरज बहुत गर्म है। परंतु उस छोटे बीज ने कहा, मैं तो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था और जीवन में आने लगा। इसने पृथ्वी के इस भाग को जिलाया, क्योंकि सूर्य चट्टान को जिलाने के लिए नहीं भेजा गया, ना कि मिट्टी को जिलाने के लिए, परंतु बीज के जीवन को जिलाने के लिए। अब पवित्र आत्मा आता है, निसंदेह ये नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं, सारे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, ये इनके लिए नहीं भेजा गया। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं विश्वास नहीं करता, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, यदि आप मरे हुओं को भी जिला सकते हैं या कुछ भी हो, और रोगियों को चंगा करते हैं और ये सिद्ध करते हैं, जो भी है, मैं अब भी इसका विश्वास नहीं करता। मैंने कहा, निश्चय ही नहीं, आप एक अविश्वासी हैं, इसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, ये आपके लिए भेजा भी नहीं गया, ये उसके लिए भेजा गया है जो विश्वास करेंगे। संदेश विश्वासी के लिए है, वे जो नष्ट हैं उनके लिए मूर्खता है, परंतु उनके लिए जो मसीह में हैं और उस बीज का भाग हैं, ये जीवन है। मुझे अनपढ़ की छोटी सी कहानी उस किसान के विषय में जिसने अंडे रखे, यानी उकाब के अंडे मुर्गी के नीचे, समझे। वो छोटा उकाब था, सही में वो विचित्र सा दिखने वाला छोटा जीव। जब वो इस किसान ने ये किया कि उकाब के अंडे को इस मुर्गी के नीचे रख दिया और उसने अजीब सा दिखने वाला चूजा निकाला, और ये विचित्र था, छोटा सा, वो उनके समान नहीं दिखता था, उसका पिता, उसके पंख उनके समान नहीं थे, और वो बस वो अजीब छोटा सा प्राणी, और वे बाकी चूजे उसे विचित्र समझते थे। और मुर्गी आसपास गई, वो उस भोजन को भी पसंद नहीं करता था जो वो उसे देती थी, वो पिछवाड़े पंजे चलाना पसंद नहीं करता था, उसका इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसे आश्चर्य होता कि वो क्यों यहाँ आसपास अजीब सा है, जो भी है, समझो। और उसने कोई भी चीज कभी नहीं चखी, वो स्वयं को जीवित रखने भर को खाता, क्योंकि उसको इसका स्वाद पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आरंभ से ही चूजा नहीं था। और मुर्गी बोलेगी, आप जानते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ऐसी कोई चीज नहीं है, कलीसिया के सदस्य बनो, ये ठीक प्रतीत नहीं हुआ इस छोटे से जन को। इसलिए वो मुर्गी के चारों ओर तब तक घूमता रहा जब तक कि एक दिन उसकी माँ, वो पुरानी उकाब जानती थी कि उसके पास इतने अंडे थे और एक खो गया, वो जानती थी कि वो उकाब कहीं पर है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ी और वो पहाड़ की चोटी पर मंडराई और नीचे घाटी में और यहीं कहीं वो हो सकता है। इस समय वो, ये उसके जन्मने का समय है, ये उसका अंडे में से बाहर आने का समय है। संभव है कौवा आकर मेरा अंडा ले गया, या गिद्ध, मुझे नहीं मालूम, किसी ने मेरा अंडा लिया है, परंतु मैं जानती हूँ वो अंडा मेरे विचारों में है, कहीं पर मेरा पुत्र है, मुझे उसे ढूंढना है। ऐसे ही परमेश्वर, वो महान उकाब है, अपने विचारों में वो जानता है कि उसकी एक कलीसिया है, उसे मालूम है उसके कुछ लोग होंगे, कोई मतलब नहीं उनसे क्या चीज लिपटी है, कोई मतलब नहीं कि वे किसके यहाँ पर जन्मे हैं, वो ढूंढ रहा है, वो अपनों को ढूंढ रहा है। और एक दिन कहानी आगे बढ़ती है, ये बूढ़ी उकाब पीछे आंगन की तरफ उड़ रही थी, वो हर ओर देख रही थी और उसने उसे ढूंढ लिया। वो उस पुनरुत्थान के लिए ये प्रमाणित करने के कि वो वास्तव में चूजा नहीं था, आखिर को वो एक उकाब था। और उसे सदा यही सिखाया गया था कि नीचे देखे, पिछवाड़े कीड़े मकोड़े देखे, परंतु उसने एक चिल्लाहट सुनी। उसने कहा, इधर ऊपर देख। उसने अपने ऊपर देखा, वहाँ 14 फीट के पंखों वाला जीव, सारे चूजों में ताकतवर, वो वहाँ पीछे आंगन में और उस पर अपना पुत्र होने का दावा कर रही थी। उसने कहा, माँ मैं तेरे पास कैसे पहुँचूँ? कहा, बस उछल, अपने पंख मारने शुरू कर, क्योंकि तू उकाब है। देखिए, उसे मालूम था कि कहीं उसका पुत्र था। कोई मतलब नहीं वो कैसे पाला पोसा गया, उसका पुत्र कहीं पर है और परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसके पास पहले से ही ठहरा हुआ अभिषिक्त की हुई कलीसिया है। उसे मालूम है कि उसके पास पुत्र और पुत्रियां हैं और एक बुलन कहीं प्रतीक्षा कर रही है। जब पवित्र आत्मा इस पर उड़ान भरना आरंभ करता है, ये पूले को हिलाता है। ओ प्रभु, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, परंतु एक वास्तविकता। कोई मतलब नहीं कितने भी उसे उकाब के विषय में बताने का यत्न करें, उसे मालूम नहीं था कि वो उकाब क्या है, फिर भी वो उकाब था। उसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो कुछ ऐसा ना देख ले जो उसे प्रतिबिंबित करता हो या वो प्रतिबिंबित होता हो। और जब हम देखते हैं नामधारी को नहीं, PhD को नहीं, ना ही LLD, ना ही एक अच्छा पड़ोसी, परंतु परमेश्वर का एक पुत्र, एक पुत्र परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर की सामर्थ्य गतिका में ढाला हुआ इस दिन के निवेदन का उत्तर दे रहा है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। कोई भी मुर्गी आपको पकड़े नहीं रह सकती। वो अपनी माँ को ढूंढता है। वो आरंभ से ही एक उकाब है। वो पहचानता है, ये वास्तविक उकाब परमेश्वर के वचन को पहचानता है। क्यों? वो एक उकाब है। एक उकाब उकाब को, वचन पृथ्वी के रचे जाने से पहले, वचन वचन को, पहले से ठहराया हुआ वचन उस घड़ी के लिए, वचन के लिए। आप अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं, वो इसे ढूंढता है। तो फिर ये मिट्टी की देह जिलाई गई और परमेश्वर की जिला देने वाली आत्मा के द्वारा जिलाई गई कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो। तुरंत जब वो जानना चाहता है कि वो कैसे उसके साथ हो सकता है, उसे सिखाया गया वो ये नहीं कर सकता था। आप अपने उछलने से अधिक ऊपर नहीं जा सकते, वो एक चूजा है, समझे? परंतु इस उकाब ने कहा, ये ऐसा नहीं है। अरे भाई, इन चूजों को देखो। कोई मतलब नहीं कि चूजे क्या हैं, आप उकाब हैं। बस उन पंखों को फैलाना आरंभ करें, उनकी थोड़ी कसरत, ऊपर उठने लगते हैं। वचन वचन को, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वो जो मुझ में विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, समझे? क्योंकि मैं जीवता हूँ, वो भी जीवित है, और यदि वो आत्मा जिसने उसे मरुओं में से जिलाया तुम में रहता है, ये तुम्हारी मरणहार देह को जिलाता है। ये क्या करता है? अब सुनिए, इसलिए कि तुम जानोगे, और ये स्तर, मैं चाहता हूँ कि ये स्तर आपके लिए किसी और स्तर से अधिक हो, अर्थपूर्ण हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। हम जानते हैं कि इसने उसके लिए क्या किया, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, ना कि देखेंगे कि इसने आपके लिए भी यही किया है। ये क्या करता है? ये मरणहार देह को जिलाता है। ये मरणहार देह जिसमें हम रहते हैं, इसे जिलाता है। दूसरे शब्दों में, इसे जीवन में लाता है। अब आप जो कभी अपने मुंह में बड़ा सा सिगार लगाकर चले और आदि आदि, या सिगरेट, आप महिलाएं जिनके कभी छोटे छोटे बाल थे, रंगी हुई और चले और छोटे छोटे कपड़े पहने और इस प्रकार की बातें, और एकदम से कुछ चिल्लाया और आपने इधर देखा और ये वचन था, देखिए इसने आपको जिला दिया। आपने कहा, छोटे कपड़े अब मेरे लिए नहीं है, शराब मेरे लिए नहीं है, और झूठ नहीं, चोरी नहीं, अब ये वो नहीं, समझे? वो आत्मा जिसने मृतकों में से जिलाया आप में है, रहता है। वो आपकी मरणहार देह को भूमि की मिट्टी में से भी निकाल लाएगा, अधीनता में। आप समझे, ये क्या है? किसके अधिकार में? मसीह। मसीह कौन है? वचन, ना कि धर्म विज्ञान, परंतु वचन। तब आप कहते हैं, ओ ये चीजें, ओ मैं सोचता हूँ ये ठीक है कि स्त्रियाँ चिपका पजामा स्लैक्स पहन लें, जबकि वचन कहता है कि नहीं। देखिए, इसे आपको उसके लिए जिलाना है, समझे? आप इस पर खींचे गए हैं, देखिए, तो फिर ये आप हैं, ये हो गया, आप वचन के भाग हो गए, ये आपकी देह को ले आया, नहीं? अच्छा, आप कहते हैं, अच्छा अब मैं आपको कुछ बताऊं, मेरा पास्टर, मैं चिंता नहीं करता कि आपके पास्टर ने क्या कहा, ये जो वचन कहता है, यदि आप चूजा होना चाहते हैं तो उसके साथ जाएं, परंतु यदि पास्टर इस वचन से भिन्न बोलता है तो फिर वो उकाबों को खिलाने वाला नहीं, ओ वो तो मुर्गियों को खिलाने वाला है। देखिए उकाबों का नहीं, देखा उकाब उकाब का भोजन खाता है, समझे, ये उत्तेजित करता है। बाइबल ने कहा ये करना गलत है, और पुरुष और आदि आदि, और आप सब जो करते हैं ये गलत है। कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, ये बाइबल कहती है वो कल आज और सर्वदा एक सा है। यदि भी ये कहते हैं कि मस्तिष्क का पढ़ना है, और ये एक प्रकार का मस्तिष्क का पढ़ना, ये विचारों का परखना और ये सारे दर्शन, ये चीजें निरर्थक हैं। देखिए वे चूजे हैं, वे नहीं जानते उकाब का भोजन क्या है। परंतु भाई जब आप उस चिल्लाहट को सुनते हैं तो आप में कुछ है कि आप आरंभ से ही उकाब हैं। क्यों? आप वो वंश हैं पुत्र के SON के, पुनरुत्थान की सुबह हो गई और पूरा पृथ्वी पर हिलाया गया कि आपको पहचाने कि आप उकाब हैं, ना कि नामधारी चूजे। अब ये देखते हैं, यदि वो आत्मा जिसने उसे मरुओं में से जिलाया, वो वचन, वचन की गति का आप में है, ये आपके मरण हार देह को भी जिलाएगी। अब कैसे हम उसके मांस में का मांस और हड्डी में की हड्डी? क्योंकि जल्दी, जबकि हम अब भी मरण है पापी, मरणहार, मरने के लिए तैयार, ये देह है, ये उस देह को जिलाता है। क्या जिलाता है? जीवन में ले आता है। वो आत्मा जो कभी पीना दौड़ना इधर उधर व्यभिचार और सब बातें पसंद करता था, ये जी गई। क्यों? वो चीजें मर गईं और आप जी उठे, ये तुम्हारी मरणहार देह को जिलाता है। इसलिए आपकी देह गति का मंदिर है, क्योंकि आरंभ से ही आप यांत्रिकी के भाग हैं। यही आपका पुनरुत्थान है, यही कलीसिया उसके साथ पुनरुत्थान में है। ये देहें ठीक इसी समय जी उठी। देखिए आपने सुना है, आपने विश्वास किया, इसने आपको नामधारी से वचन में बदल दिया। देखा गति का, यदि ये पानी के ऊपर आती है तो ये बस पटर पटर करेगा। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, पम पम पम, ओ मैं बाइबल का विश्वास करता हूँ, पम पम पम, परंतु यहाँ वहाँ पम 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 नहीं होता, समझे। परंतु जब इसका प्रहार 1000 अष्टक पर होता है तो ये जूम हो गई। आपने देखा कैसे मेरी गति का प्रहार करती है, परंतु ये एक चूजे पर प्रहार करती है, इससे कोई लाभ नहीं। परंतु जब ये उकाब पर प्रहार करती है, वो बाहर चला जाता है। आमीन। गति का यांत्रिकी के संग, देखा मेरा क्या अर्थ है, यही है, यदि वो सच्चा उकाब है, अब वो इसे समझेगा। मैं यहाँ पर एक छोटे पवित्र लेख को स्पष्ट कर दूं। मैं सोचता हूँ हम फोन पर नहीं है, परंतु हम अभी यहाँ पर हैं। संत यूहन्ना 5:24, यीशु ने कहा वो जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा, उसके पास अनंत जीवन है। अब देखिए मैं नीचे सड़क पर जाता हूँ और इसे वास्तव में लेता हूँ बिना आत्मिक समझ के। ये क्या है, ये कहते हुए कि ये कुछ नहीं कहता, परंतु वो कह रहा है जो वो कहता है। वहाँ ग्रीक का सही शब्द देखें, मूल में ये कहते हैं वो जो मेरा वचन समझता है। अब ये सिद्ध करने के लिए ये सही है, मैं वहाँ नीचे जाता हूँ और एक शराबी सड़क पर आ रहा है, किसी और पुरुष की स्त्री के साथ बाहें डाले हुए, हठीला और व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेते हुए आदि आदि, इस प्रकार से कहता है। क्या आपने सुना है कि उस प्रचारक ने क्या कहा? क्या आपने सुना? हाँ मैंने ये सुना है। इसका ये अर्थ नहीं कि उसके पास अनंत जीवन है, समझे समझे। वो जो मेरा वचन समझता है, वो जो उकाब है। अब भाई बहनों मैं इससे अधिक वचन चाहता हूँ, ठीक है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, अनजान के पीछे वे नहीं चलेंगी। जैसे कि विवाह तलाक के मामले में, उस दिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैंने आकर उसे वैसे ही बताया जैसे उसने मुझे बताया, किसी महिला सेवक ने ठीक धार वाला दिया, थोड़ा सा चिल्लाई, उसने कहा मैं समझती हूँ कि तुम परमेश्वर का स्थान ले रहे हो। मैंने कहा नहीं महिला। कहा आपने कहा कि उनके पाप क्षमा हो गए। कहा कहाँ कहा है? केवल परमेश्वर के पास सामर्थ है। देखिए दूसरा फरीसी, समझे। मैंने कहा आप देखते हैं कि आप जान सकते हैं कि यीशु ने पतरस को बताया और चेलों को, इसके बाद जब उसे प्रकाशन मिल गया था कि वो कौन था, उसने उसे बताया तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा धन्य है तू। देखिए योना के पुत्र मांस और लहू ने ये तुझ पर कभी प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट किया। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते, और मैं तुझे कुंजियां देता हूँ, जो भी तू पृथ्वी पर बांधेगा मैं ये स्वर्ग में बांधूंगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा ये वो दिव्य प्रकाशन है कि वचन देह बना। यदि ये पुत्र के द्वारा उस दिन देह था, वो दूल्हा, वो आज दुल्हन के द्वारा देह है, समझे। जिसके भी पाप आप क्षमा करो, उनके लिए ये क्षमा हुए, जिनके पाप आप रखो उनके लिए रखे गए। अब कैथोलिक कलीसिया ने ये ले लिया और अपने याजकों के पास ले गए, परंतु ये शारीरिक है। ध्यान दें, ये आत्मिक था, प्रकट किया गया वचन जिसने ये किया। यही कारण है उसने उन्हें बताया कि जाकर नाम में बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो जान गया कि ये जान गए हैं कि वो कौन था। उस दिन उस प्रचारक से बातें करते हुए उसने मुझसे कहा, उसने कहा, अब भाई ब्रैनम मैं बाहर आ गया हूँ और मिल गया हूँ किसी अमुक कलीसिया में चला गया, एक पेंतेकोस्तल कलीसिया, जहाँ की अब पेंतेकोस्तल ने गोल पापड़ी लेना आरंभ कर दी है। आप जानते हैं, आपने ये सुना है, मेरा अनुमान है वो कोशर चंद्र देवता आप जानते हैं, और उन सब ने ये स्वीकार कर लिया है, इसे ले रहे हैं। इस व्यक्ति ने कहा, उसकी भक्त मंडली उसके पास गई, उसने कहा, जिसे मैं आशीषित करूं वो आशीषित है, क्या यही नहीं जो याजक कहता है, उसके पास सामर्थ है कि इसे मसीह के देह में बदल दे। छह में से एक और दूसरे आधा दर्जन वैसे ही है। और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो उस बपतिस्मे के मामले को यीशु के नाम में झुठलाना चाहता था, क्योंकि यही वो मनुष्य था जिसने ये कहा, ये मसीह विरोधी था जिसने ये किया। उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि ये सब आवश्यक है कि मनुष्य को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए? मैंने कहा, हाँ श्रीमान। उसने कहा, जब उसका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हुआ? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, उसका बपतिस्मा बिल्कुल हुआ ही नहीं। देखा, उसका बपतिस्मा हुआ ही नहीं, कोई नाम नहीं है, ये तो उपाधि है। मैंने कहा, इसकी मान्यता नहीं है। मैंने कहा, क्यों किया पत्रस ने, क्यों किया? उसने कहा, अच्छा मैं आपको कुछ बताऊं। उसने कहा, प्रेरित 10:49 में उसने कहा, पत्रस जब ये वचन बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। परंतु मैंने कहा, वो वापस पलटा और कहा, क्या मनुष्य जल को रोक सकता है कि इनका बपतिस्मा ना हो? उसने कहा, अब यहाँ बोल रहे थे थोड़े समय पहले, प्रेरित 19, जब पौलुस इफिसुस में से सारे देश में से ऊपर निकला और उन चेलों को पाया और कहा, क्यों कहा, उनका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ था? मैंने कहा, नहीं, उनका प्रायश्चित का बपतिस्मा हुआ था, पापों की क्षमा के लिए नहीं, प्रायश्चित का, क्योंकि यीशु का अभी तक जाना नहीं गया था, बलिदान चढ़ाया नहीं गया था। उसने कहा, अच्छा उनका फिर से बपतिस्मा क्यों होना चाहिए? मैंने कहा, वो मनुष्य जिसके पास कुंजियां थी, उसने ये कहा, तुम सब ये जान लो कि मनुष्य के बीच स्वर के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम से होता है। अब जो कुछ भी वचन से या कार्य से करो, सब यीशु मसीह के नाम में करो। कोई और दूसरा नाम नहीं है, कोई कलीसिया नहीं, कोई पुरोहित तंत्र नहीं, उपनाम नहीं, या कुछ भी नहीं। फिर भी वो शारोन का गुलाब, घाटी की कमुदनी, भोर का तारा, अल्फा ओमेगा, आरंभ और अंत, यहोवा येरे, राफा, मनुष्य, ये सब, ये वो सब चीजें हैं, परंतु फिर भी वो इनमें से किसी भी उपनाम में उद्धार नहीं। यहोवा उद्धार नहीं, शहरों का गुलाब यद्यपि वो है उद्धार नहीं, पिता पुत्र या पवित्र आत्मा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम में। और फिर बाइबल ने कहा कि प्रायश्चित और पापों की क्षमा उसके नाम से यरूशलेम से आरंभ हुआ और पृथ्वी के छोर तक। उसने कहा, क्या आप सोचते हैं इससे कोई अंतर पड़ता है? मैंने कहा, श्रीमान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो और मैं और मेरी पत्नी वहाँ मेज पर बैठे थे, वो थोड़ा सा हटा, मुझे देखा, चला गया। मैंने कहा, हम दोनों एरिजोना के हैं, हम यहाँ रहते हैं, और मैं और हम अपनी सलाह जानते हैं और अपने वचन और सब, और हमारा मेयर, गवर्नर और सब कुछ। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, भाई यदि मैं आपको बताऊँ, वहाँ जाएं और हमारे भोजन के लिए हस्ताक्षर कर दें एरिजोना प्रांत के गवर्नर के नाम, क्या आप जाकर इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि वे इसे स्वीकार करेंगे? क्यों? उसने कहा, मैं समझता हूँ कि नहीं। उसने कहा, यीशु ने ये क्यों कहा? मैंने कहा, यही बात है, देखा, क्यों? यदि मैंने आपको बताया इस भोजन के लिए जाकर हस्ताक्षर कर दो एरिजोना प्रांत के गवर्नर के नाम से, हम एरिजोना के नागरिक होने के नाते और जानते हैं कि गवर्नर कौन है, क्यों आप जानते हैं कि आप सैम गॉडरेड हैं, उनके नाम के हस्ताक्षर करेंगे? कहा, क्योंकि वो प्रांत का गवर्नर है, आप जानते हैं गवर्नर कौन है। और जब उसने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, और वो जान गया कि वे कैसे बपतिस्मा देने जा रहे हैं, वे जान गए थे कि वो कौन था। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, देखा। उसने कहा, ओह मैं समझता हूँ, परंतु अब अगली बात क्या है, आप विश्वास करेंगे? देखा, वो जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। और जब ये नया अनंत जीवन आप में रहता है, ये संभावित है जब आप इस पवित्र आत्मा को पाते हैं जो उन्होंने पेंतेकुस्त पे पाया। वे यांत्रिकी थे, अब गतिका को आना था। उन्होंने विश्वास किया। आप हमारे अच्छे बैप्टिस्ट मित्र हो जाते हैं जो हमें बताता है हम विश्वास करते हैं, तो ये हमने पा लिया। परंतु ये उनके पास नहीं था जबकि उन्होंने इसका विश्वास किया। प्रेरित 19, उन्होंने ये विश्वास किया परंतु ये उनके पास नहीं था। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से तुमने विश्वास किया? देखिए, उनके पास यांत्रिकी थी, ठीक, क्योंकि चेले या मेरा अर्थ अपोलुस उन्हें सिखा रहा था और बाइबल से सिद्ध कर रहा था। ये यांत्रिकी यीशु ही मसीह था, परंतु अब भी उनके पास गतिका नहीं थी। देखा, यही बात है, ठीक है। आपके पास संभावित बयाना है, प्रतीक्षा। अब जब आप गतिका पाते हैं तो आप मरणहार से अमरणहार में जी उठे। ये सारी देह को वचन की अधीनता में ले आता है। ये आपसे भिन्न व्यवहार करवाता है, भिन्न दिखते हैं, भिन्न रहते हैं, ये आपको भिन्न बना देता है। अब देखिए, जिलाए गए आप जो एक समय पापों और अपराधों में अंधकार में मरे हुए थे, जिलाए गए। किसके द्वारा? उसके आत्मा ने, जिसने यीशु को जिलाया उस ईस्टर की सुबह मरुओं में से। और यदि ये तुम्हारी मरणहार देह में रहता है, अब देखिए, ये भी जिलाता है, जीवन में लाता है और वचन की अधीनता में लाता है। अब आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपके पास वो आत्मा है और स्वयं को वचन से अलग करें? आप किसी और चीज से जलाए गए, क्योंकि ये आपके मरणहार देह को वचन में जलाएगा, निश्चय ही ये करेगा। आप इसके बिना नहीं दौड़ सकते, आप बस फटर फटर करते हैं यदि आप इस सब का विश्वास नहीं करते। यदि आप पेट्रोल का भाग हैं और पानी का भाग हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे? आपको 100% ही पेट्रोल लेना होगा। यदि नहीं, आप पटाखा मारते हैं और आप में शक्ति नहीं, समझे? मैं इसका विश्वास करता हूं और इसका नहीं, पम पम पम, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। परंतु ओ, जब आप संपूर्णता को लेते हैं तो ये उसे प्रकाशित होने देता है कि हर वचन सत्य है। अब ये ध्यान करें, जैसा कि अब हम बंद करते हैं, ध्यान दें, ये एक छोटे बीज के समान है जो भूमि में पड़ा है। अब संभावित आप जी उठे हैं। जब आपने स्वयं में पवित्र आत्मा पाया, आप तभी जी उठे। आपकी देह संभावित जी उठी। छोटे से बीज को देखिए, इसे भूमि में बो दें, इसे उसके सोते से पीना है, वो जल जो डाला गया, और जैसा कि ये पीता है, ये ऊपर को उसकी ओर आता है, उस बीज की समानता की ओर बढ़ता है जो उस भूमि में गया था, समझे? कलीसिया इसी प्रकार से उसी मार्ग से आती है, न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अब खिलने पर है, समझे? परमेश्वर का आत्मा इसी के द्वारा आता है, और संसार की आत्मा मसीह विरोधी के द्वारा आती है उसी प्रकार से, और अब कलीसियाओं के महान संगठन के द्वारा खिल रही है सारी चीजें। ये व्यक्ति इसी प्रकार से आता है, हर चीज इसी पर कार्य करता है, परमेश्वर के इसी मापदंड पर, क्योंकि ये कल, आज और सर्वदा एक सा है। ध्यान दें, अपने मार्ग पर पुनरुत्थान की संपूर्णता में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आ रहा है, जैसे कि सूर्य SUN उस छोटे पौधे को जिसने परमेश्वर के सोते से पिया खींचता है, करता रहता है। देखिए, ये केवल एक ही चीज से पीता है। आप एक बार उस छोटे बीज पर तेल डालें, इसे मार डालेगा, ये ठीक बात। आप ठहरा हुआ पानी, पुराना पानी जो अच्छा नहीं है, ये गंदा है, ये बढ़ोतरी को रोकता है, ये फल नहीं लाएगा, क्या ये ठीक बात है? परंतु आप अच्छा हल्का वर्षा का जल डालें, आमीन, मनुष्य का बना हुआ नहीं कि उसमें रसायन है, इसे ऊपर आकाश से आने दें और छोटे पौधे को देखें, इसे कोई और पानी नहीं बढ़ाएगा जैसे वर्षा का पानी। आप उसमें क्लोरीन इत्यादि मिला दें जैसे कि आप देने का यत्न करते हैं इसके साथ, और पहली चीज जो आप जानते हैं, ये पौधे को मार डालता है। आज यही मामला है, वे नामधारी सोते का जल उसे देने का यत्न कर रहे हैं और ये विकास को रोकता है, परंतु उसे लेने दें, वहाँ आए जहाँ अनुग्रह ओस की बूंदें चमकदार हैं, मेरे चारों ओर दिन और रात को चमकती हैं, यीशु संसार की ज्योति, तब ये आपको मिल गया। हम उस ज्योति, सुंदर ज्योति में चलेंगे, वहाँ आए जहाँ अनुग्रह ओस की बूंदें चमकती हैं, मेरे चारों ओर चमकती है। इन मनुष्यों के बनाए हुए सोतों को लीजिए, मुझसे दूर रहे, मैं किसी और सोते को नहीं जानता, कुछ नहीं सिवाय यीशु के लहू को, मैं तो बस इसी सोते को जानता हूँ। प्रभु तेरा वचन मुझ में वास करे, अपने आत्मा से इसे सींचे। ध्यान दें, अब यदि वो आत्मा जिसने यीशु को कब्र में से उठाया आप में रहता है, तो आपके पास संभावित जीवन है, आत्मा के द्वारा अगुवाई की वचन को आप में जिला दे कि इसका विश्वास करें। वो छोटी चीज ऊपर की ओर जोर लगाती है जैसा कि वो बढ़ता है। ध्यान दें, पेंतिकॉस्ट पर उनकी देहें नए जीवन के लिए जी उठी थीं। उन छोटे डरपोक के झुंडों को देखें। क्या मैं आपको अधिक रोके हुए हूँ? देखिए, मैं थोड़ा गर्माया हूँ, यही है, मुझे अच्छा लग रहा है। ओह प्रभु, ध्यान दें, वे डरपोक थे परंतु उनके पास यांत्रिकी थी, समझे? परंतु वे सब वहाँ पर बैठे हुए थे और कह रहे थे, ओह मुझे उनसे डर लगता है, ओह मुझे डर लगता है, मैं बाहर जाकर ये दावा करूँ, क्योंकि वे सारे महान बिशप और आदि आदि बाहर हैं, ओह मुझे डर लगता है, वे याजक और मुझे दावा करते हुए भय लगता है, डर लगता है कि ये कहूँ कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ओह मैं बस ये नहीं कर सकता। आप देखिए, परंतु अचानक से गति का आ गई। जी हाँ, और इसने क्या किया? इसने केवल उनकी आत्मा को ही नहीं भर दिया अंदर से, परंतु उनकी यांत्रिकी को जागृत कर दिया। उनकी देहें जी उठी। अब वे और डरपोक नहीं रहे, वे सीधे लोगों के सामने गए। जी हाँ श्रीमान, तुम यहूदा के लोगों और तुम जो यरूशलम में रहते हो, इसके पहले गति का आती वे केवल यांत्रिकी थे। देखा, तुम लोग जो यरूशलम में रहते हो, तुम्हें ये मालूम हो, और मेरा वचन सुनो, जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं है, मैं उनमें से एक हूँ, ये वो है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्या है, ये वचन है, ये है, और मैंने हमेशा कहा है यदि ये नहीं है तो मुझे ये रखने दो जब तक वो आता है। नहीं, ये वो है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया है, और ये अंत के दिनों में घटित होगा। यहोवा कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। देखिए, गति का यांत्रिकी में आ गई, अब वे और नहीं डरते। आप में से कुछ लोग जो उन स्त्रियों से डरते हैं कि वो आप पर हंसेंगी कि आपके बाल लंबे हैं या आपने श्रृंगार करना छोड़ दिया। आप में से कुछ लोग अपनी संस्थाओं से डरते हैं कि वे आपको निकाल देंगे जब आप अपनी मंडली को वचन का बपतिस्मा देंगे। आपको आवश्यकता है कि आप स्वयं को ऊपर की कोठरी में बंद कर लें जब तक कि गति का आती है। ये ठीक बात है। इसने इन्हें बदल दिया, इसने इन्हें जिला दिया, इसने इन्हें भिन्न बना दिया। वे बदले हुए लोग थे उसके बाद से। इसने उन्हें पुराने डरपोक जीवन से यहूदा के गोत्र के सिंह के समान जिला दिया। उन्होंने पूर्णतः शहीद होने का सामना किया। क्रूसों पर ठोके गए, उल्टे क्रूस पर चढ़ाए गए, जलाए गए, सिंहों की मांद में फेंके गए। अब और डरपोक नहीं, मृत्यु उन पर बिल्कुल भी जयवंत नहीं थी, गति का यांत्रिकी में थी। जी हाँ श्रीमान, इसने उनके मरणहार शरीर को जिला दिया। अब सुनिए, यहाँ प्रमाण के लिए दूसरी चीज है। इसने इन्हें इस प्रकार से जिलाया जब तक कि, आप जानते हैं क्या, वे स्वर्गीय स्थानों में उठा लिए गए और उनके मरणहार शरीर ऐसे जिलाए गए कि यहाँ तक कि उनकी भाषा बदल गई, उनकी भाषा भी जी उठी, उनकी भाषा भी जी उठी। यही जो बाइबल ने कहा, उनकी मरणहार देहें जिलाई गई, उनकी भाषा जिलाई गई, उनके विचार जिलाए गए, उनकी आत्मा जिलाए गई, उनके जीवन जिलाए गए, कुल मिलाकर वे जिलाए गए। उन्होंने बात करने का यत्न किया और मनुष्यों की भाषा में बात ना कर सके, वे परमेश्वर की उपस्थिति में इतने जिलाए गए जब तक उन्होंने नई भाषा बोली, एक स्वर्गीय भाषा। ओ क्या ही जिलाने की सामर्थ है! यदि वो आत्मा जिसने यीशु को मरुओं में से जिलाया तुम में बसता है, ओ हालेलुया, ये तुम्हारी मरणहार देह को जिलाएगा। ये आपसे वो चीजें करवाएगा जो आपने पहले नहीं की। तब वे जिलाने वाली सामर्थ्य से भरे हुए थे, समझे? आपकी देह पाप के अधीन अब और नहीं, आपकी इच्छाएं। वो कहता है, यहाँ से बाहर आ जाओ। आप कहते हैं, अपना मुंह बंद रखें। ओ हमारे पास सबसे बड़ा है, अपना मुंह बंद करें। ओ आप एक उकाब हैं। क्या आपने कभी देखा है कि पुराना उकाब कैसे आत्मनिर्भर होता है, चलता है? वो गिद्ध के समान फुदकता नहीं हर मरे हुए पर और सारे मरे हुए जो भूमि पर पड़े हैं। नहीं श्रीमान, वो शेखी के साथ चलता है। अपना मुंह बंद रखें। ओ यहाँ अच्छा भोजन है, यहाँ है, मेरे लिए नहीं है। मेरी इच्छा बदल गई है, मेरी भूख दूसरे प्रकार की है, क्योंकि मनुष्य संसार पर केवल मुर्दों पर नहीं जिएगा, परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। एक सच्चा जीवित उकाब उसके द्वारा जीता है। आमीन। ओ और उसने मसीह को कब्र में से जिलाया, तुम में निवास करता है और तुम्हारे मरणहार शरीर को उसकी उपस्थिति में जिला दिया। आप इसे पहचानते हैं? अब आप गिद्ध नहीं रहे, आप उकाब हैं, आप संसार की चीजें नहीं चाहते, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आप उस सोते पर से खाते हैं जिसके विषय में संसार नहीं जानता, आप इसे पी रहे हैं। कोई जानता है? संसार विषय में नहीं जानता कि आप छिपा हुआ मन्ना खा रहे हैं। संसार ये कभी नहीं जानता, क्योंकि आप एक उकाब हैं। आप जिलाए गए हैं। जहाँ से आप इसे पा सकते हैं, आप इसे नीचे नहीं पा सकते। आपको इसे यही पाना है। आपको जी उठना है। वहाँ उठाए गए ताकि ये जी उठे। उन्होंने क्या किया? वे दूसरी भाषा में बोले। बाइबल ने कहा, उन्होंने किया। वे स्वर्ग के नीचे की हर भाषा में बोले। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि मरण हर देहें जो वहाँ पर कहती हैं कि अब मैं नहीं जानता कि मैं इसका विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं। एकदम से वे ऐसे जी उठे, जब तक कि यहूदा के गोत्र का वो सिंह उन पर आ पड़ा उस हिलते हुए पुले पर। ओ, वो काब अपने को बुलाने आता है, और उन्होंने मरने के लिए भी अपने जीवन से प्रेम नहीं किया। आमीन। ओ, अब और अधिक होने जा रहे हैं जो अपने जीवन का लहू देंगे पवित्र आत्मा के सुसमाचार के लिए और इसकी किरमिजी, और पुत्र को फिर से प्रकट होना है उस दुल्हन में। अंत के दिनों में वो जलाने वाली सामर्थ को आना ही है। इन मरे हुए नामधारियों में से और मत्सारों में से जीवित परमेश्वर के जीवित वचन में। ओ नहीं, ये इन्हें नए जीवन में जिलाता है। अब ये हमारे लिए भी वही कार्य करता है। तो फिर ध्यान दें, वे जिलाने वाली सामर्थ से इतने जी गए थे। अब जरा इस पर ध्यान से सुने, मैं आपको दिखाने का यत्न कर रहा हूँ। जिलाने वाली सामर्थ केवल उनके प्राण ही में नहीं थी, परंतु ये उन सब पर थी। केवल गति का ही नहीं आई कि जिलाए, परंतु इसने यांत्रिकी को भी जिला दिया। अब देखिए मेरा क्या अर्थ है। वे इतने जिलाए गए थे कि यहाँ तक कि उनकी जुबानें अन्य भाषा बोलने लगी। वे मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ से इतने जिलाए गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथ रखे। वे जिलाने की सामर्थ से इतने जिलाए गए, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने हाथ बीमारों पर रखे, वे चंगे हो गए। इसने तुम्हारी मरणहार देहों को जिला दिया। वे उनके हाथ रखने के द्वारा चंगे हो गए। आत्मा ने उनकी संगति को परमेश्वर के साथ कर दिया, जब तक कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ गए। जब एक व्यक्ति मर गया और उसका प्राण चला गया, इसने जीवन को फिर वापस बुला लिया। आमीन, महिमा हो। अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है। ये ठीक बात है, जिला दिया। उसका पुनरुत्थान केवल उसके लिए ही नहीं था, परंतु जो भी चाहे, इससे पहले से ठहराए हुए बीज के लिए जो यहाँ पड़ा था, जिला दिया। मरणहार देहों को जिला दिया। उन्होंने अपने हाथ बीमारों पर रखे, वे चंगे हो गए। उन्होंने आत्मा में प्रार्थना की, उन्होंने दर्शन देखे, मरेओं को जीवन में फिर से वापस बुलाया। ये ठीक बात है, उनकी मरणहार देहों को जिला दिया। यदि ये आप में आता है, यदि ये ऐसा होता है, अब आप कह सकते हैं ये ऐसा है, परंतु यदि ये ऐसा है तो ये चिन्ह होंगे। आप समझे, ये आपकी मरणहार देह को जिला देता है, ये आपको जिला देगा। अब ध्यान दें, परमेश्वर की उपस्थिति में जिला रहा है। क्यों? ये परमेश्वर का आत्मा था जिसने यीशु को कब्र में से जिलाया। और परमेश्वर का आत्मा, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, ग्रीक भाषा से आया है। यदि आप इसे जोई को देखते हैं, जो कि आप में से होता हुआ और फिर जिलाता है, उनके मस्तिष्क भी। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा आप में रहता है, यद्यपि आपने ये सब कुछ किया है जो आपने सोचा है? ठीक है, ये आपका प्रमाण है कि ये आपके पास है या नहीं। यदि वो आत्मा जो मसीह में था आप में है, यह आपको वचन के लिए भी जिलाएगा, क्योंकि वो वचन है। और यदि ये भिन्न है, तो इसने आपको वचन से अलग जिलाया, तो फिर ये मसीह का आत्मा नहीं। चिंता नहीं, आपने क्या किया है। जब तक ये आपको वचन में नहीं ले आता, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वे प्रत्येक वचन से जिएगी। उस दिन मैं बात कर रहा था, मेरी अपनी माँ चली गई और वो बहुत ही भिन्न महिला थी। आप जानते हैं, वो थी लगभग आधी इंडियन और वो विचित्र थी। वो व्यक्ति थी जिसने स्वप्न नहीं देखा, परंतु मैं नहीं सोचता उसने केवल 4 या 5 स्वप्न देखे अपने सारे जीवन में। परंतु हर बार जब उसने स्वप्न देखा, वे सच्चे थे। उसने स्वप्न देखा, वो सच्चा था। मुझे याद है, एक बार जब बहुत वर्षों पहले प्रचार करना आरंभ किया, हम यहाँ सड़क पर ठीक यहाँ ऊपर रहा करते थे। मैं यहाँ इस आराधनालय में प्रचार कर रहा था और उसने एक स्वप्न देखा कि मैं यहाँ 3 सीढ़ियों के एक और खड़ा हूँ। मैं खड़ा हुआ हूँ, हर एक को प्रचार कर रहा था कि वे इन 3 पायदानों की ओर आएं, इसके पहले कि राजमार्ग पर चढ़ें। और राजमार्ग पर मोतियों जैसी एक सफेद रेखा थी जो स्वर्ग के द्वार तक जा रही थी, उस मोती के दरवाजे तक। और ये मोती उन सीढ़ियों के ऊपर तक फैले हुए थे। क्या आज ये ठीक मेरा संदेश नहीं, न्यायोचित पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? और मैं कह रहा था कि व्यक्ति को इन तीन पायदानों पर से होकर आना है ताकि राजमार्ग पर चलने के योग्य हो। और ये कहा, वहाँ एक महिला आई। आप जानते हैं 35 वर्षों पहले लोग कैसी जूतियाँ पहनते थे। वहाँ एक महिला आई और एक बड़े जोड़े का जूता आज के समान पहने थी, जैसे वे पहनते हैं पथरी एड़ी की जूती। और वो आई और मैंने कहा, बहन एक मिनट रुकिए, आप इस राजमार्ग पर इसके साथ नहीं चल सकती। और मैंने कहा, आप ये नहीं कर सकती। और उसने कहा, आह, उसने कहा, बाकी स्त्रियों की ओर चारों ओर घूम कर देखा और कहा, इसका विश्वास मत करो, ये पागल पुरुष है, समझे, इसका विश्वास न करें। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं न्यायोचित पवित्रकरण और पवित्र आत्मा के साथ भरी हुई हो सकती हूँ और फिर भी इस पर चलूंगी। और वो मैंने उसे जाने दिया, इसके विषय में कुछ अधिक नहीं कर सका, उसे रोक ना सका। और वो राजमार्ग पर कूद गई और उसने पीछे घूमकर बहन की ओर देखा, कहा, देखिए मैंने आपको बताया था, और उसने भागना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि बाइबल ने यशायाह 5वें अध्याय में कहा, उनकी अकड़ी हुई गर्दने, उन्हें होना ही है, वे पुती हुई हैं, देखा, ठुमक ठुमक कर चल रही हैं, जैसे उन्हें नाच करना है, ठुमक कर चलते हैं, अपनी एड़ी से टकटक कर रही हैं, सय्योन की पुत्रियां अंत के दिनों में। और वो उस राजमार्ग पर चलने लगी जितनी जोर से वो भाग सकती थी, और थोड़ी देर बाद सड़क पतली हो जाती है, वो लड़खड़ाने डगमगाने लगी इस प्रकार से, और वो अलग चली गई। और माने का भयानक चीख जो मैंने कभी अपने जीवन में सुनी, वो स्त्री उन लपटों में से और धुएं में गिर रही थी, नीचे नीचे जा रही थी इस प्रकार से। कहा, मैं घूमा और बोला, समझे, उसने सिवाय एक वचन के सारी बातें मानी। देखिए, हर बात सिवाय एक वचन के। निश्चय ही पेंतिकोस्तल स्त्रियां बच सकती थी, पवित्र की गईं, पवित्र आत्मा से भरी हुई, और फिर असफल पूर्णतः। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर वचन से जो उसके द्वारा निकलता है, समझे। और उसने उसे असफल कर दिया, और जैसा कि मैंने कहा, उसे आगे बढ़ते जाना था, ठीक है, परंतु देखिए, वह सुनने में असफल हो गई, बता रहा था कि आगे क्या था। और उसने चेलों प्रेतों के द्वारा सुसमाचार लिखा, और चेलों भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा और आदि आदि, और वे नहीं सुनेंगे। अब इस जिलाने वाली सामर्थ पर ध्यान दें, जोई उस वचन को ला रहा है, वो विचार जो मसीह में था तब आप में है। मैं आपको दिखाने का यत्न कर रहा हूँ कि आप जब आप जी उठे, जब परमेश्वर ने यीशु को मरु में से जिलाया, उसने आपको भी जिलाया और जीवन के लिए जिला दिया उसके साथ। अब आप जीवन में जिलाए गए, यद्यपि तब आप केवल उसके गुण थे उसके विचारों में, परंतु परमेश्वर ने उसमें सब देखा उसे पूरा होने पर। जब परमेश्वर उस देह को देखता है, आत्मा ने उस गतसमनी बाग में उसे छोड़ दिया, उसे एक मनुष्य के समान मरना था। मित्रों, स्मरण रखें, उसे ये नहीं करना था, वो परमेश्वर था। परमेश्वर ने उस देह का अभिषेक किया जो कि मनुष्य की देह थी, और वो नहीं, यदि वो वहाँ परमेश्वर के समान जाता तो वो कभी नहीं मरता। इस प्रकार की मृत्यु परमेश्वर को नहीं मार सकते। उसे ये नहीं करना था, परंतु स्मरण रखें, वो आपके साथ उसमें होकर गया। देखिए, परमेश्वर ने दुल्हन को दूल्हे से कभी अलग नहीं किया। फिर भी इसलिए जब परमेश्वर ने मसीह की देह को देखा, उसने नर और नारी दोनों को देखा। ये सब उस एक देह में छुड़ाए गए, समझे, वे एक हैं, एक एक वचन, वही वचन जो दूल्हे के लिए बोला गया, दुल्हन के लिए बोलता है। कैसे दुल्हन आ सकती है और जिन बातों की प्रतिज्ञा उसके विषय में की गई उन्हें प्रकट करने में असफल रहे, और दूल्हा आ जाए और दुल्हन नहीं होगी? परंतु जब उसने ये सब कुछ किया, यहाँ तक कि इसे सिद्ध करने के लिए वो स्वयं मरे हुओं में से जी उठा, इसके बाद तब दुल्हन को वही कार्य करना चाहिए। उसे भी ठीक वही होना है जो वचन ने कहा कि वो अंत के दिनों में होगी। क्या उसे मलाकी 4 से होते हुए वापस नहीं आना है? क्या उसे प्रकट नहीं होना है जैसा ये सादोम के दिनों में था? क्या संसार को ठीक ऐसा नहीं होना है? क्या ये बातें परमेश्वर के वचन का सिद्ध प्रमाण नहीं जो हमें बताया गया है? अरे मित्रों, मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को अधिक समय से रुके हुए हूँ, भोजन के लिए अभी 15 मिनट हैं, परंतु हो सकता है तब तक मैं इसे पूरा कर लूँ। परंतु ध्यान दें, इधर देखें, ये कितनी सिद्ध बात है। मैं नहीं जानता मैं आप लोगों को फिर कब मिलूंगा। देखिए, इस पर ध्यान दें, परंतु परमेश्वर ने दूल्हे के अंदर दुल्हन को पहले से ही देखा। हल्लुया। देखिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए जैसे आदम, उसे उसके संग जाना था। आदम जानता था कि वो क्या कर रहा है, हवा को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही थी, परंतु आदम अपनी पत्नी के साथ चला गया, समझे। और यीशु ने अपनी पत्नी का स्थान लिया और उसके लिए पाप बन गया। याद रखें, वो आप बन गया, वो आपके दंड के बदले खड़ा हुआ ताकि आप उसके स्थान में खड़े हो सकें। वो आपके स्थान में खड़ा हुआ ताकि आप उसके स्थान में खड़े हों। क्या प्रेम है, क्या संगति है। हम इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? हम सिवाय उससे प्रेम करने के कुछ और कैसे कर सकते हैं? मित्रों, मैं इस पर घंटों रुक सकता हूं, परंतु हम कुछ और आगे बढ़ें। आज पैंतीस कौशलों के अनुभव के समान और इस अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का आना जैसे कि प्रतिज्ञा की गई है, ये अधिकार पत्र के सारांश के समान है। देखा, अब आप एक पदवी ले सकते हैं, निश्चय ही देखा, आप एक स्थान के लिए पदवी ले सकते हैं, परंतु ये अभी ये नहीं कहता कि ये आपका है। नहीं श्रीमान, कोई भी पीछे से आ सकता है और इस पर अपना दावा कर सकता है, परंतु जब आप एक साक्षेप पाते हैं तो ये दर्शाता है कि हर चीज जो कभी विरोध में थी वो हटा दी गई, वही रचे जाने से पहले। क्या ये ठीक बात है? और जब एक मनुष्य ने कह दिया कि वो वचन का विश्वास करता है, और तब जब पवित्र आत्मा आता है, ये पदवी का सारांश है, और ये आपको अनुमति देता है, जब आपके पास ये सारांश है कि उसमें जो भी कुछ भी है आपका है, उस पर जो भी है आपका है। आमीन। और ये हमें सारांश देता है जब पवित्र आत्मा इस अधिकार पत्र पर आता है, जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले पृथ्वी के रचने से पहले देखा और जीवन की पुस्तक में नाम रखे, परंतु पुरुष और स्त्री के द्वारा जन्मे और पाप की अधीनता में रखा और पाप के दोषी। परंतु जब मैंने इसका विश्वास किया, मैंने दस्तावेज पाया। परंतु जब पवित्र आत्मा आता है, ये वो सारांश था कि हर चीज मेरे विरोध में थी, चाहे मेरी माँ या मेरा पिता ने किया हो, मेरी दादी ने ये किया, जैसे छोटा मिर्गी वाला बालक जिसके लिए मैंने प्रार्थना की कि कुछ मिनटों पहले कि उसके पूर्वजों से आई वो मिर्गी उस बालक पर आई, मैंने कहा। परंतु जब वो सारांश आ गया, उसने हर चीज को हटा दिया, तब मैं उस सारांश का अधिकारी हो गया। आमीन। और जैसे निश्चित रूप में आत्मा ने मसीह को मरुभूमि में से जिलाया, मेरे पास वो सारांश पत्र है कि मैं उसकी देह का भाग हूँ। उस पवित्र आत्मा के सारांश के साथ उस वचन की देह को जिला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसमें किया, उसने ये प्रतिज्ञा अंत के दिन में की है, ये सारांश मेरे सारे पाप समाप्त कर दिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे पाप हटा दिए गए, और पवित्र आत्मा एक सारांश के समान आता है उस अधिकार पत्र के लिए जिसे परमेश्वर ने मुझे अपने पूर्व ज्ञान के अनुग्रह के द्वारा दिया। ओह प्रभु, आप किससे भयभीत हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा, मत डर, मैं वो हूँ जो मर गया था और फिर जीवता हूँ, और मैं सदा तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। किसी भी बात की चिंता ना कर, यहाँ तक कि मृत्यु भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ध्यान दे, अति सुंदर। आइए अब इसे जल्दी करें। सारांश उपाधि, कर्जा तय हो गया, हर चीज जो इसके विरोध में थी हटा दी गई। हा हा हा, महिमा हो। मैं मूर्खता का व्यवहार कर सकता हूँ, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है। ध्यान दें, समझे। ओ, ये सारांश अधिकार पत्र, क्या आप अनुभव करते हैं इसका क्या अर्थ है? क्या आप ये अनुभव करते हैं भाई, इसका क्या अर्थ है? कोई भी इसे आपसे नहीं ले सकता। आमीन। मैं एक धारक हूँ। आमीन। क्या क्या अधिकार पत्र? अब मैंने इसे अपने लाभ के लिए परिवर्तित कर लिया है, उसके मृत्यु गाड़े जाने और पुनरुत्थान को। वो मैं हो गया ताकि मैं वो हो सकूं। अब वो पापी हो गया ताकि मैं एक पुत्र हो जाऊं। आमीन। और सारांश अधिकार पत्र का अधिकार, क्योंकि ये उनके चिन्ह होंगे जो विश्वास करते हैं। देखिए, अधिकार पत्र सारांश। अब जल्दी से, इसके पहले हमारे पास 10 मिनट और हैं। अब हम ध्यान दें, जल्दी, आत्मा का जिलाया जाना। मैं आपको कुछ चिन्ह दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएंगे। अब देखिए, इस पर ध्यान दें, जिलाने वाली सामर्थ मेरा विषय था। पुत्र के जी उठने के बाद देखिए उन पर कैसे ये पेंतिकोस्त पर किया गया, इसने उनके साथ क्या किया, उस जिलाने वाली सामर्थ ने उनसे क्या किया, इसने उन्हें जिला दिया। अब हम इस पर ध्यान दें कि इसने स्तफनुस पर क्या किया। स्तफनुस जिलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था, क्या ये बात सही नहीं थी? वो जिलाने वाली सामर्थ से भरा था, इसने उसे भयभीत नहीं किया। उसने कहा, तुम हटीले लोगो, हृदय और कान से खतना रहित, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते आए हो, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया, जिस धर्मी का आगमन भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शाया, क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने उन्हें पथरवा नहीं किया? ओ, उसे कुछ कर दिया, निश्चय ही वो जिलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था। और उन्होंने कहा, हम इस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाएं? और जब वो मर गया उन्होंने उसे पत्थरवाह किया और बेचारा उसका सिर इस पर पत्थर ऐसे लग रहे थे। उसने ऊपर देखा और बोला, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। जिला देने वाली सामर्थ कार्य कर रही थी, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है। जिलाने वाली सामर्थ ने स्तफनूस के साथ ये किया। दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दें, जिसके साथ जिलाने वाली सामर्थ थी, उसका नाम फिलिपुस था। वो जिलाने वाली सामर्थ से इतना भरा हुआ था कि सामरिया में एक महान सभा हो रही थी। शैतान निकाले जा रहे थे, लोगों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा था, उनकी शानदार सभा हो रही थी और आत्मा उससे बोला, ओ गतिक नीचे आई और इसने कहा, इस बेदारी को छोड़ो। परंतु सेवकगण क्या कहेंगे? वे कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, समझे? वो जिलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था, उसके पास तेल था और गति का उस पर आ रही थी। कहा, वहाँ रेगिस्तान में जा, और उसे वहाँ एक खोजा मिला और उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, एक मनुष्य जो संदेश को इथोपिया ले गया। ये ठीक बात है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में यदि आपने कभी भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है तो इसे कर लें और देखें कि फिर जलाने वाली सामर्थ आपको लेके जाएगी। जब स्तफनूस ने ये महान कार्य किया, यानी स्तफनूस ने नहीं परंतु फिलिपुस ने ये महान कार्य किया कि उस महान बेदारी को छोड़ और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जब उसने पूरा कर दिया खोजे को बपतिस्मा देने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा पालन, वो जलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसे उठाकर ले गई। ये तुम्हारी मरणहार देह को भी उठा लेगा यदि इस आत्मा ने यीशु को मरों में से जिलाया। इसने फिलिपुस को जिला दिया, यहाँ तक कि सैकड़ों मील तक नहीं दिखाई दिया, हो सकता है 150 मील वहाँ कहीं दूसरे देश में। इसने इसकी मरणहार को देह को जिला दिया। उसने ये कैसे किया? वो जिलाने वाली सामर्थ से इतना भरा हुआ था। ओ जीवित परमेश्वर की कलीसिया, हम यहाँ चीनी की गोलियों के आसपास खड़े नहीं रह सकते जिन्हें आज हम यहाँ आसपास खिला रहे हैं। हमें पूरी रीति से भरा और प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए, जब तक कि जलाने वाली सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा ना हो। हमें उठा लिया जाना ही है किसी दिन उस रैप्चर में। जी हाँ श्रीमान, आमीन। ओ प्रभु, इस भाव को क्षमा करें, मैं उस माँ के विषय में सोच रहा था जो वो छोटे छोटे झबले बनाती है जिन्हें छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुरानी माँ को याद होगा, पुराने छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते, आप थोड़ी कॉफी और कुछ चीनी लेते, एक कपड़े में बांधते और उसे चूसने को देते, उसकी उसे शांत रखें, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये इसे मार डालेगा, समझे? उसमें कैफीन और दूसरी चीजें, थोड़ी सी मिठास कि वो उसे सटक ले, ये उसके अंदर कैफीन को ले जाता है। हम ऐसी चीजों से थक चुके हैं, वापस आओ, आप उकाब हैं, परमेश्वर के वचन पर वापस आओ, मजबूत हो जाओ। आपकी भावनाओं को कोई गलत नहीं आघात नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आप मनुष्यों की सारी बुराइयों से स्वतंत्र हैं। कोई भी आपके विरुद्ध जो भी कहता है, ये अधिक प्रेम लाता है। आमीन। और जिलाने वाली सामर्थ आपको स्वर्गीय स्थानों में ले गई, एक उकाब जो चूजों के ऊपर उड़ता है, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में। ओ ये फिलिपुस के ऊपर था जिसने उसे जिला दिया, उसे दूर ले गया। आइए दूसरे व्यक्ति को लें, हनोक नाम का एक व्यक्ति था। वो परमेश्वर के हर वचन के साथ लगभग 500 वर्ष चला। उसकी एक गवाही थी कि मैंने एक बार भी उसके वचन का उल्लंघन नहीं किया। वो जलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था। जब गतिका ने उन यांत्रिकियों पर प्रभाव डाला, यहाँ तक कि उसे मरना भी नहीं पड़ा, उसे ऊपर घर उठा लिया गया, बस चलना आरंभ किया। वो इतना जैसे कि फिलिपुस, वो जलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था, बजाय इसके कि वो गाजा पर जाता और दूसरे स्थान पर जाता जहाँ उन्होंने उसे ऊपरी किनारे पर पाया, बजाय उस मार्ग के वो बस चला गया। ओ कहा, जो भी है, मैं बूढ़ा मनुष्य हूँ, मेरे पास इतनी जलाने वाली सामर्थ है कि मैं चलता हुआ पृथ्वी से बाहर चला जाऊंगा। वही जलाने वाली सामर्थ अब इस समय हमारे पास है। मैं तुम्हारी मरणहार देहों को जिला दूंगा। क्या ये सही नहीं है, ये जिला देने वाली सामर्थ? हनोक की सिद्ध गवाही के साथ हर वो चीज जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा मैंने किया, हर चीज जो मैंने देखी जो उसने मुझे करने को कहा मैंने इसे किया। और वो गतिका से इतना भर गया था, यानी यांत्रिकी से, जब तक कि जब जिलाने वाली सामर्थ ने उस पर प्रभाव डाला यांत्रिकी पर, इसने इसे ऊपर उठा लिया, वो पृथ्वी से बाहर चलता स्वर्ग को चला गया। अब ध्यान दें एलिया पर, देखिए एलिया वो महान भविष्यद्वक्ता था, पुरुष अपने दिनों में। भाई बहनों मुझे क्षमा करें, उस दिन में उसने वो मुंह नंगी हुई स्त्री को ललकारा, वे जिजाबेल और अहाब, और तब तक खड़ा हुआ और कोई नहीं उसके समान दिखा कि उसके साथ खड़ा हो, और उसने फटकार लगाई और समाप्त किया और वहाँ खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने उसकी चिंता की और हर जगह उसकी सहायता की। अब जानते हैं वो बूढ़ा एक दिन थक गया, उसने कहा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, वो जा रहा था, मेरा अनुमान है 90 वर्ष का, बहुत बूढ़ा, और वहाँ घूम रहा था और जीवित करने वाली सामर्थ्य इतना भरा हुआ था। आप जानते हैं क्या, उसने यर्दन के पार देखा। ओ परमेश्वर, मैं करीब उस पार देख सकता हूँ, क्या आप नहीं सकते? जीवित करने वाली सामर्थ्य इतना भरा हुआ था, जब तक कि उसने रथ को वहाँ खड़ा नहीं हुआ देख लिया। कुछ आग के घोड़े और अग्नि में रथ वहाँ किसी वृक्ष से बंधा था। वो बस नदी के पार गया और यहाँ तक कि बिना मरे घर को चला गया। जिलाने वाली सामर्थ्य ने भेज दिया, इस कारण एक रथ उसको ऊपर लेने के लिए स्वर्ग से उतरा, यहाँ तक कि उसका लबादा उस पर से हटाकर वापस अलीशा के लिए फेंक दिया। ये ठीक बात है। तब इस व्यक्ति ने वो कपड़ा उठा लिया, फिर से कलीसिया का एक प्रतीक, देखिए उस कपड़े को उठा लिया। अब उसने दुगने आश्चर्य कर्म किए जो कि मसीह और कलीसिया का प्रतीक है, समझे? एलिया ने 4 किए, उसने 8 किए, देखा? अब वो सामर्थ में दुगना था क्योंकि उसने ये मांगा था, इससे भी महान चीज है जो मैं करता हूँ तुम करोगे, समझे? परंतु जिलाने वाली सामर्थ से वो इतना भरा हुआ था और सारी चीजें, यहाँ तक कि ये सारी चीजें उसने दुगनी की जो एलिया ने किया था, उससे भी अधिक जो उसने किया। और ध्यान दे, उसने 80 या 90 वर्ष का जीवन जिया, वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया, और वो उसे ले गए और गाड़ दिया। अब जानते हैं जिलाने वाली सामर्थ ने उसे नहीं छोड़ा, उसके बहुत वर्षों बाद जब हड्डियों पर से उसका मांस सड़ गल करके हट गया था, वो कब्र में पड़ा था। एक दिन वो एक मरे हुए मनुष्य को ले जा रहे थे और उन्होंने शत्रु को देखा और उन्होंने इसे एलीशा की हड्डियों के ऊपर फेंक दिया। उसके अंदर जिलाने वाली सामर्थ्य इतनी थी उन हड्डियों में, यहाँ तक कि वो मनुष्य फिर से जिंदा हो गया। ओ ये तुम्हारी मरणहार देहों को जिलाएगा। यद्यपि कब्र में मरे हुए सड़े हुए और अब भी वो जिलाने की सामर्थ्य उस धूल पर थी। हालेलुया। ओ वो जिसने मसीह को मरुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को भी जिलाएगा। एलिया वहाँ पहले, एलीशा और एलिया, याद रखें, वो मरा हुआ मनुष्य, वो भविष्य दक्ता, वो जलाने वाली सामर्थ्य से भरा हुआ, वो कब्र में गला पड़ा हुआ था, इतनी जलाने वाली शक्ति, यहाँ तक कि उसने उस मरे हुए को उस पे फेंक दिया, वो जीवित हो गया। वो अभी बीमार पर हाथ रख सकता है, क्या वो नहीं रख सकता? आमीन। आप इसी स्थिति में हैं और याद रखें, हम उसके मांस में का मांस हैं, यीशु मसीह, हम उसके मांस में का मांस और हड्डी में की हड्डी, और इसका कोई और चारा नहीं। हम जी उठने वाले हैं, बस हो गया, आप जी उठने वाले हैं बस। ईस्टर का अर्थ रीति रिवाजों से ऊपर है, ये अब भी है क्योंकि हमारी देहें उसके संग जी उठी और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और हो सकता है ये देह समुद्र में सड़ जाए, ये भूमि में सड़ जाए और चम्मच भर राख ना हो, परंतु वो आ रही है क्योंकि वो आत्मा जिसने मेरे प्रभु को मरुओं में से जिलाया, इस मरणहार देह को भी जिला दिया, इसने आपकी मरणहार देह को जिला दिया, और हम उसके लाभ उठाने वाले, उसके पुनरुत्थान के, उसकी अनंत जीवन की योजना, जिसके विषय में मैंने बहुत बातें की आप जानते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। उसने कहा डर मत, वो जान जाएगा, क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, कब्र तेरी जय कहाँ रही। मैं जुटने वाली सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय दिलाई। जी हाँ श्रीमान, जिला देने वाली सामर्थ्य, ओ प्रभु, वो सदा काल के लिए जीवित है, कल आज और सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। ध्यान दें, मसीहा वो अभिषिक्त, वैसे ही उसकी दुल्हन, छोटे छोटे मसीहा, देखिए देखिए अभिषिक्त किए हुए। ध्यान दें, मृत्यु परमेश्वर के जिलाने वाली सामर्थ्य को नहीं रोकती, मृत्यु इसे नहीं रोक सकती। जब आपने इसे पा लिया, ये अनंत जीवन है, कुछ भी नहीं है जो इसे रोकने वाला हो। आप इसे काम में नहीं ला सकते, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपना जीवन जिए, ये तब भी आपको नहीं रोक सकती, ये वैसे ही अच्छा है जैसे ये था। ध्यान दें, मूसा जिलाने वाली सामर्थ्य से भरा हुआ था, क्या था? वो भविष्यद्वक्ता था जिसके पास वचन आया, वो वचन का भाग था, वो उस दिन का वचन था, क्या ये ठीक बात है? और उसके मर जाने के पश्चात 800 वर्ष के बाद वो रूपांतरण वाले पर्वत पर एलिया के साथ खड़ा हुआ, ये ठीक है? जिलाने वाली सामर्थ्य मृत्यु से कभी नहीं ले गई, नहीं नहीं, मैं इसे फिर जिला उठाऊंगा। सरदूत आया, उसे घाटी में दफन किया, वो सड़ गया था और गया, उसकी हड्डियां समाप्त हो गईं और सारी चीजें, परंतु उसने जी उठने की सामर्थ्य वहाँ अब भी थी। इसने उसे जिलाया, उसे वापस लाया और वो वहाँ खड़ा था। ध्यान दें, आप कहते हैं भाई ब्रैनम क्या ये ठीक बात है, 800 वर्ष के बाद वो, ओ यदि आप मती में पढ़ेंगे, मेरे पास वचन है मती 27:51, आप इसे लिख सकते हैं, जब वहाँ वे सारे जिन्होंने ये विश्वास किया कि वो आएगा, बाइबल ने यहाँ कहा उसके आने के पश्चात वे भूमि में सो रहे थे, जिलाने वाली सामर्थ उनके ऊपर थी और वे उसका भाग थे। वे संत लोग, वे उसका भाग थे क्योंकि उन्होंने उसका विश्वास किया था। उनके पास वो संभावित जीवन था उन भेड़ों के बलिदान से होते हुए एक प्राश्चित, जो भेड़ की आत्मा को कभी भी मनुष्य पे नहीं ला सकता था। कैसे मनुष्य की आत्मा के साथ परमेश्वर स्वयं आप पर देखा तो हमारे ऊपर कितनी अधिक जलाने वाली सामर्थ है। परंतु पाप के प्राश्चित से होते हुए एक मेमना बलिदान किया गया एक प्रतीक में, जो हमारे पास है वो प्रतीक नहीं है, ये प्रतिरूप है। हम किससे भयभीत हैं? और वे लोग जिनके पास केवल प्रतीक था, जो उसके पुनरुत्थान की ओर संकेत करता था, उसके साथ कब्र में चले गए, जैसे अय्यूब पहले अपने महान परिश्रम के अधीन। ओ, उससे हर चीज ले ली गई। शैतान ने कहा उसे मुझे लेने दो, मैं उससे तेरे मुख पर तेरी निंदा करवाऊंगा, और तब उसे छोड़ दिया, कहा तू उसके जीवन को ना लेना, और उसने सब किया सिवाय उसके जीवन के। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई, कहा उसकी सांस उसके लिए अपरिचित हो गई। दूसरे शब्दों में उसका उससे कोई मतलब नहीं प्रतीत होता है कि उसका उससे कोई प्रेम नहीं रहा, बस उसे धक्का दे दिया। अय्यूब तू दयनीय है, तू क्यों नहीं परमेश्वर को कोसता और मर जा? बोला तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। ओ देखिए, वो उसे पकड़े रहा जो उसके पास था। अब वो एक भविष्यद्वक्ता था। उसने कहा मैं पापी नहीं हूँ, मैंने दिया हुआ बलिदान चढ़ाया है, आमीन। वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा था, वो वचन पर था। कोई मतलब नहीं दूसरे क्या कहते हैं, वो ठीक वचन पर टिका था। तब उस महान जबरदस्त घड़ी में कहा तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, क्यों प्रभु का नाम धन्य हो। कहा मैं इस संसार में खाली आया, मैं यहाँ नंगा आया और उसी प्रकार चला जाऊंगा, प्रभु का नाम धन्य हो। वहाँ अपने फोड़ों में टूटा हुआ बैठा था, उसके बालक मर गए, वो कंगाली में घिरा हुआ, उसके सारे मृत उसके विरोध में, उसकी कलीसिया के सदस्य, सब कुछ स्वयं को खुजला रहा था। और कितनी दयनीय अभागा, आप में से कोई भी अभी तक ऐसा नहीं, वो अब भी उस वचन को थामे है, वो एक उकाब था। ओह, आप सारे समय उसकी आंख पर झिल्ली नहीं डाल सकते, नहीं नहीं। यकायक वचन पर खड़ा हुआ, क्या घटित हुआ? आकाश सिमट गया, गर्जन होने लगी, बिजली कड़कने लगी, और अय्यूब ने ऊपर की ओर देखा और एक दर्शन देखा, कहा मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत के दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा, और यद्यपि कीड़े उसकी देह को नष्ट कर दें और सब कुछ, वो जिलाने वाली सामर्थ वहाँ पर होगी। मैं स्वयं परमेश्वर का दर्शन करूंगा, जिसे मैं स्वयं देखूंगा, दूसरे की नहीं मेरी आंखें देखेंगी। क्या ये ठीक बात है? यद्यपि मेरी डोर मुझ में समाप्त हो जाए, मेरी खाल के कीड़े अब वो मेरी देह में हैं, इसे नष्ट कर डालें। आप जानते हैं खाल के कीड़े आपके पास नहीं आते, ये कीड़े पहले ही आप में हैं, आपकी ही खाल में। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? आपको बक्से में डाल दिया और इसे कसकर बंद कर दें, कीड़े आपको वैसे ही खा जाएंगे क्योंकि वे आपके अंदर हैं। आप कीड़ों का भंडार हैं, आरंभ से ही ये भीतर हैं। यद्यपि खाल के कीड़े मुझे नष्ट कर दें मेरी देह को, तब भी अपनी देह में मैं परमेश्वर को देखूंगा। और उस पुनरुत्थान की प्रातः महिमा हो, हालेलुया। मती ये महान लेखक 27:51 ने कहा उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद वे पुराने नियम के संत, उनमें से बहुत से जो पृथ्वी की भूमि में सोए हुए थे, वे कब्र से बाहर आ गए और नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वो जीवित करने वाली सामर्थ अब भी एलीशा की हड्डियों में थी, जबकि वहाँ हड्डियाँ नहीं थी। अब भी अय्यूब पर थी, जब चम्मच भर उसकी देह की धूल नहीं थी, परंतु जिलाने वाली सामर्थ अब भी वहाँ थी। यदि यह आत्मा जिसने यीशु को मरुभूमि में से जिलाया तुम में रहता है, तो वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी जिलाएगा। अब जल्दी से ध्यान दें, आप कहते हैं ओ मेरी इच्छा है मैं भी पहले होता। आप उससे अच्छे समय में जी रहे हैं। अब यदि आप सब, मैं आपको पवित्र लेख लिखते हुए देखता हूँ, ठीक है लिखिए 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। अब ध्यान दें कितना सुंदर, देखिए वे संत जो मसीह में सोए, परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा। देखिए संत जो कब्र में विश्राम कर रहे हैं, जैसे एलीशा या कुछ एलीशा के समान थे, उनमें से कुछ भी, कुछ जी उठे, कुछ ले लिए गए, कुछ कब्रों में होंगे, वे उसके साथ जाएंगे। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं उनके साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से हवा में मिलें। जी उठने की सामर्थ जीवितों पर, जी उठने की सामर्थ मरे हुओं पर। वही जी उठने की परमेश्वर की सामर्थ इन दोनों नबियों पर है। उनके नामों को देखिए, लगभग एक से हैं, एलीशा, एलिया। दुल्हन और दूल्हे को देखिए, उनमें से एक श्री यीशु और दूसरा श्रीमती यीशु। अब देखिए, लगभग एक ही से बस उसके और दुल्हन के बीच, समझे, एलिया। और देखिए कैसा यहाँ प्रतिनिधित्व है। अब एलिशा ऊपर उठा लिया गया, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा ठीक है, एलिया और एलिशा ने पुनरुत्थान तक विश्राम किया, समझे। ये ऐसा ही है जैसे एक चिड़िया के को अपने सल्तनत के लिए दो पंख चाहिए, समझे। कलीसिया का वहाँ ठीक उन दोनों नबियों में प्रतिनिधित्व हुआ था, क्योंकि हम जो जीवित हैं प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे, जो सोए हुए हैं उनसे कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, दोनों पंख एक साथ आएंगे और हम उड़ जाएंगे। हालेलुया, उड़ गए। क्योंकि क्या जीवितों में या मरे हुओं में वो जिलाने वाली सामर्थ अब भी जीवित है। ध्यान दें, याद रखें, जिलाए हुए ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है। देखिए, आज जिलाने वाली सामर्थ, याद रखें, हम जिलाए हुए हैं, अधिक समय नहीं हुआ सहायता के लिए। और मैं सोचता हूँ हमारे प्रभु ने कहा, और ऐसे ही पौलुस ने, जो पिता ने मुझे दिखाया, मैंने कुछ नहीं छिपाया, मैं आपको बताता हूँ। और इन अंत के दिनों में जब हम उसकी जिलाने वाली सामर्थ को अपने ऊपर देखते हैं, वो हमें भी जिलाने वाली सामर्थ देता है कि बीमारों को चंगा होता हुआ देखते हैं। हम जिलाने वाली सामर्थ को अपने बीच में कार्य करते हुए देखते हैं, जैसे कि ये आरंभ के दिनों में उन लोगों पर थी। देखिए, दर्शन के द्वारा वापस लाई गई और मरेओं को जिलाया। देखिए, ये बीमारों को चंगा करती है। उस दिन मैं किसी को बता रहा था, यहाँ डॉन वन वर्ड है, मैं सोचता हूँ आप सब उसे जानते हैं, उसके साथ शिकार खेल रहा था। बेचारा एक भला व्यक्ति, वो वहाँ कलीसिया में आता है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है। बस उसने कहा, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहा। मैंने उसके कान को देखा, अंदर का हिस्सा लगभग बाहर आ गया था। मैंने कहा, डॉन वन, तुम कैसे हो? उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा इस तरह से, और कैंसर। मैंने कहा, डॉन वन, तुम्हारे कान को क्या हुआ? उसने कहा, भाई बहन, मुझे नहीं मालूम, लगभग 6-7 महीनों से ये हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा, तुमने इस विषय में क्यों नहीं कुछ कहा? बोला, भाई बहन, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? बोला, मुझे आभास है। मैंने बस अपना हाथ उस पर रखा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसके दो दिन के बाद वह निशान तक नहीं था। ये क्या है? जिलाने वाली सामर्थ। देखिए, ये तुम्हारी मरणहार देहों को जिलाएगी। उसका कान खा लिया जा होता, उसका मस्तिष्क खत्म हो गया होता, वो मर गया होता, परंतु जिलाने वाली सामर्थ, समझे। और एक दिन जब मैं थका हुआ स्वयं में, मैंने कहा, यदि लड़के अच्छा है, तुम आगे बढ़ो, तुम 50 वर्ष के हो, तू यदि तू कुछ प्रभु के लिए करने जा रहा है, अच्छा हो कि तू जल्दी जल्दी कर, तू बूढ़ा हो रहा है, समझे। और वहाँ उस प्रातः जिलाने वाली सामर्थ आई और उसने मुझे उस पर्दे के पार देखने दिया, और मैंने आप सबको वहाँ पर देखा, ओ समझे। उसने कहा, वो सब जिससे कभी तूने प्रेम किया है, सबने तुझसे प्रेम किया है, वो तुझे मिले हैं, समझे। मैंने उन सबको वहाँ इस प्रकार से देखा, ये क्या है? जिलाने वाली सामर्थ। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला जिलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ था और खड़ा हुआ और सहस्र शताब्दी को देखा, और सब यशाया जिलाने वाली सामर्थ से भरा हुआ, खड़ा हुआ और सहस्र शताब्दी और सब कुछ देखा, जिलाने वाली सामर्थ। और यदि वो आत्मा जिसने मसीह को मरुओं में से जिलाया तुम में रहता है, ये तुम्हारी मरणहार देह को भी जिलाएगा, मरणहार देह। याद रहे, जिलाने वाली सामर्थ। देखिए, इस दिन में हमने क्या देखा? जिलाने वाली सामर्थ हमारे पास आई कि 7 मोहरों को खोले। वो क्या था? मनुष्य की चतुराई नहीं, परमेश्वर के जिलाने वाली सामर्थ। देखिए, परमेश्वर की जिलाने वाली सामर्थ ने पहले ही बता दिया कि ये घटित होगा। देखिए, परमेश्वर की जिलाने वाली सामर्थ ने संसार से गवाही दिलवाई कि ये सत्य है। मैंने आपको बताया कि प्रभु का स्वर्गदूत अग्निस्तंभ में चारों ओर था, जिलाने वाली सामर्थ, संसार को गवाही देने दो, ये सत्य है। उसमें वे नहीं जानते कि क्या था, और हम जानते हैं। उधर से देखिए, और ये वहाँ हमारा प्रभु है। आप देखिए, वही है जिसने ये मोहरें खोली हैं। वो स्वयं वो मोहरे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सारा वचन मसीह है और मसीह मोहरे हैं कि खुल गया। तो फिर मोहरों का खुलना क्या था? मसीह का प्रकट होना। और वही 7 स्वर्गदूत जो कि 7 कलीसियाई कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब पूरा हो गया। और यहाँ तक कि हम देख नहीं सके, उन्होंने किया, उन्होंने चित्र उतारा, हमने नहीं। और वहाँ वो खड़ा है, सर्वोच्च न्यायी। ये दर्शा रहा है कि वो अल्फा और ओमेगा है और आरंभ और अंत है। क्या ही प्रमाण है, क्या ही प्रमाण है! जिलाने वाली सामर्थ ने ये हमारे लिए किया। जिलाने वाली सामर्थ, आइए इसके आगमन को देखें। जिलाने वाली सामर्थ हमें मृत्यु से छीन कर जीवन में ले आई। जिलाने वाली सामर्थ विचारों का परखना देती है कि जाने आपको आपके साथ क्या गड़बड़ है और क्या करना है, आपने क्या किया है, आपको क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था और आप क्या होंगे। जिलाने वाली सामर्थ, ये सारी बातें, हमारा प्रभु यीशु जिलाने वाली सामर्थ से इतना भरा हुआ है कि वो कुल मिलाकर ये सब कुछ था। वो जिलाने वाली सामर्थ से इतना भरा हुआ था कि उसने कहा, तुम इस देह को नष्ट कर दो, मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। जिलाने वाली सामर्थ के विश्वास के विषय में वो बातें करता है, इस देह को नष्ट कर दो और मैं करूंगा इस मंदिर को और मैं इसे 3 दिन में जिला दूंगा। क्यों? वो ये क्यों कहेगा? उसे मालूम था कि ये उसके लिए लिखा गया था। देखिए, ये उसके लिए लिखा गया था उस वचन के द्वारा जो असफल नहीं हो सकता। वचन ने कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दूंगा, न ही उसका प्राण अधोलोक में छोड़ूंगा। उसे मालूम था कि जिलाने वाली सामर्थ उसे उठा खड़ा करेगी कि उसकी एक भी कोशिका न सड़ेगी। उसने कहा, तुम इस मंदिर को नष्ट कर दो और मैं इसे 3 दिन में फिर वापस ले आऊंगा। क्यों? ये भविष्यवाणी थी, परमेश्वर का वचन। और भविष्यवाणी यदि ये परमेश्वर का सच्चा वचन है तो ये असफल नहीं हो सकता। और वही भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन जिसने ये कहा कि वो उसे जिला देगा, कहता है हम पहले ही उसके साथ जी उठे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, उसने कहा डर मत। और ये लिखा है कि आत्मा जो अब है उसमें था, अब हम में है, हमारी मरणहार देहों को भी जिलाएगा। मित्रों, डरो नहीं, वो SON पुत्र जी गया है, पुत्र जी उठा। नहीं, अब रूपांतरण के लिए देखो, हमें से प्रत्येक का वहाँ प्रतिनिधित्व किया गया। वहाँ जीवित संत थे जो उठा लिए गए, वहाँ एलिया खड़ा था, वहाँ मूसा खड़ा था, मरे हुए संत भी, उन दोनों में जी उठने वाली सामर्थ थी। चाहे एक मर जाए, दूसरा नहीं मरा, वे सब वहाँ पर हैं। ध्यान दें, ओ देखिए, हम इन अंत के दिनों में क्या देख रहे हैं, वही चीज जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी, यूहन्ना 14:12। अब देखिए, निश्चय ही लोग कहते हैं आप समर्थ होने का दावा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बस रूपांतरण वाले पर्वत पर उसके समान हैं। देखिए, निश्चय ही हम समर्थ का दावा नहीं करते, परंतु हम वैसे ही हैं जैसे वे थे उस रूपांतरण पर्वत वाले पर। वे ये नहीं कह रहे थे, मूसा कहता है, देखा देखा मैं कौन हूँ। चेले कहते हैं, देखिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप जानते हैं कि क्या हुआ? ध्यान दें, उन्होंने यीशु को महिमा युक्त देखा, बस वे प्रतिनिधित्व को देखना चाहते थे, यीशु महिमा युक्त। और ऐसा ही आज है, हम कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहते, हम चिंता नहीं करते लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं। हमारे नाम कुछ नहीं है, ये उसका नाम है। हमारा जीवन कुछ नहीं है, ये उसका जीवन है। ये उसकी सामर्थ है, न कि हमारी सामर्थ। और केवल एक ही चीज है जो हम करना चाहते हैं, वो ये कि उसे महिमा में देखें। और ये कैसे हो सकता है जबकि वो हम में महिमा में है, अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो हम में है, हम उसे फिर से प्रतिनिधित्व में देखते हैं जैसा कि वो आज है। क्या आप इसे समझे? देखिए, हमारी इच्छा महिमा में होने की नहीं है, हमारी इच्छा कोई बड़ा नाम पाने की नहीं, हमारी इच्छा किसी कलीसिया की बड़ाई मारने की नहीं, या संडे स्कूल में गिनती बढ़ाएं, या शेखी बाजी हमें आए, मौज मस्ती दावत, या बिल्ले बटन, या इस प्रकार की चीजें, ये हमारी इच्छा नहीं। हमारी इच्छा है उसे महिमा में देखें। महिमा में क्या? घमंड के साथ नहीं, परंतु हम में, हमारे जीवन ये सिद्ध करें कि वो जीवित है और हम में रहता है। यदि मैं मार्ग से अलग हट जाऊं, इसलिए जब विलियम बर्नम सोचे भी नहीं, और आप यहां तक कि सोचे भी नहीं, जब तक यीशु को अपने मध्य में देख सकते हैं, उसे देखें, ये हमारी इच्छा है। यही हमें जिलाने वाली सामर्थ देता है, और ये हमें आनंद देता है कि हम जाने हम उसके साथ हैं, देह और हड्डी उसी की, उसकी दुल्हन होने के नाते, और उसके उसी प्रमाणित विधियां जो हमें प्रमाणित हो रही हैं कि वो अब मरे हुओं में से जी उठा है। कोई आश्चर्य नहीं, उसने कहा मत डर, क्योंकि अब ध्यान दे, हम उसके द्वारा छुड़ा लिए गए हैं और अब उसके साथ जी उठे। यही स्तर का अर्थ लोगों के लिए है, उसके साथ जी उठे। ध्यान दें, अब उसका आत्मा हम में है, वो दस्तावेज, उसका पूरा दाम चुकाया जा चुका है। नहीं, आप नहीं कहते, मैं आशा करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ। आप ये पहले ही बना चुके हैं, ना कि मैं इसे बनाऊंगा, मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैंने ये कभी नहीं बनाया, उसने ये मेरे लिए बनाया, समझे? मैं नहीं। ठीक है भाई बहनों, वे कहते हैं मैं चिंता नहीं करता, वे क्या कहते हैं, ये उसने बनाया मेरे लिए, बस यही मैं चाहता हूँ। मैं इस विषय में ध्यान कर रहा हूँ, मैं बस उसे प्रकट होते हुए देखना चाहता हूँ। आप ये कैसे कर सकते हैं कि उसे नीचे बुलाएं? वो आप में है, देखिए वो आप में है। ठीक है, तो फिर प्रभु यदि मैं स्वयं को रास्ते से हटा लूं, तो आप प्रकट हो सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप ऐसे ही अभिषिक्त किए हुए हैं। वो जो सब पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। ध्यान दें, महिमा हो। सारे प्रमाणों को एकत्र करते हुए आज इस प्रातः हमारे पास, ओ मैं उस गीत के विषय में सोचता हूँ, ओ वो पुनरुत्थान की सुबह जब मृत्यु की रस्सी तोड़ी जाएंगी, हम जी उठेंगे। हालेलुया, हम जी उठेंगे। आप इसका विश्वास करते हैं? हम जी उठेंगे, उसमें हम उसके भाग हो जाएंगे। वो ईस्टर परमेश्वर का वो प्रकट किया हुआ भेद, जैसे कि वो तब था मृत्यु के बाद जीवन का। अब हम जीवित हैं जो एक समय पापों और अपराधों में मरे हुए थे। सच्ची ईस्टर की मोहर ने मेरे चारों ओर से मृत्यु को तोड़ दिया और मैं जीवित हूँ। आरंभ में ईस्टर की मोहर ने रोम की मोहर को तोड़ दिया। उसने ईस्टर की मोहर को मोहर बंद किया और मनुष्य जब वे मरे चले गए थे, परंतु उसने मोहर तोड़कर भेद को प्रकट कर दिया। और अब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे चारों ओर के जीवन से मोहर को तोड़ दिया और मसीह प्रकट हो गया, जैसा कि वो हम में जीवित है, क्योंकि अब हम उसके साथ जी उठे हैं। ओ पृष्ठ दर पृष्ठ हम जी उठेंगे। हालेलुया, हम जी उठेंगे। आमीन। और वो पुनरुत्थान की सुबह जब मृत्यु की रुकावटें टूट गई हैं, हम जी उठेंगे। हालेलुया, हम जी उठेंगे। ओ क्या आप आनंदित नहीं? मैं बहुत आनंदित हूँ। पहले वहाँ एक छोटे से स्थान में एक सुबह मोहर तोड़ दी गई थी और मैं उसके साथ जी उठा। एक नई सृष्टि, उसके जी उठने की सामर्थ्य। पुत्र उठा है। अधिक समय नहीं हुआ मुझे एक मछुआरे की कहानी सुनाई गई थी। एक व्यक्ति आया और एक बूढ़े मछुआरे को लिया कि जाकर पश्चिमी किनारे पर मछली पकड़े। वे उस प्रातः चले गए। यदि आप में से किसी ने सामन के लिए मछली पकड़ी, क्यों? आप जानते हैं कि क्या हुआ। वहाँ बहुत ही धुंधल का कुहासा होता है। मैं अपने छोटे भाई एडी बिस्किल को वहाँ देखता हूँ, हिंदुस्तानियों के लिए एक मिशनरी, और हमने स्वयं उन किनारों पर मछली पकड़ी। इसलिए ये मछुआरे एक प्रकार के बगले थे। आप जानते हैं, वो मछली पकड़ने गया और वे राह से अलग हो गए, पाव पटने की प्रतीक्षा करने लगे। आप जानते हैं, और वे कोहरे की चेतावनी नहीं सुन सके और ये मछुआरे उत्साहित हो गए। बोले, हम समुद्र की ओर मुड़ रहे हैं। वो उत्साहित हो गए। उसने कहा, पुत्र बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो बूढ़ा मछुआरा शांत, आप जानते हैं, वो जान गया कि वो किस विषय में बात कर रहा था। बोला, प्रतीक्षा करो जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, तब हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। आप कहते हैं, क्या मुझे मेथोडिस्ट ही होना चाहिए, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल? थोड़ी प्रतीक्षा करो, पुत्र आ रहा है, हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। वो वचन है, जब तक वचन प्रकट होता है प्रतीक्षा करो। बीच पर पूरी तरह से चमकता है, हिलाने वाला पूला, हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्षमा करें, मैंने आपको देर तक रोके रखा। आप में से कितने आज रात्रि को रुकने जा रहे हैं? ओ तो फिर इस सांझ को वापस आए, समझे लगभग 7 बजे। क्या आपके पास कोई है? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। क्या यहाँ एक या बहुत से हैं जिनके पास ये जिलाने की सामर्थ्य आप में नहीं है? सूर्य चमका और आप इस आराधनालय में बैठे हैं। आपने टेप सुन लिया और फिर भी आत्मा ने आपको नहीं जिलाया। जब तक आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, आप पुरुषों और स्त्रियों, आप उसके लिखे हुए हर वचन का पालन कर सकते हैं। ओ ये क्या ही भयंकर बात है! क्या हो यदि आप मरे हुए बीज होते? आप में कोई जीवन नहीं होता, परंतु आप में कुछ है जो आपको बताता है, मैं इस प्रातः जीवित हो जाना चाहता हूँ। मैं इस अवस्था से उठ जाना चाहता हूँ जिसमें मैं हूँ। मैं मरा हुआ बीज नहीं होना चाहता जो धूल में हो जाए और बहती हुई लकड़ी। मैं उठ जाना चाहता हूँ। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहें, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ हाथों को देखें। वेदी की बुलाहट करने की कोई भी तरीका नहीं। हम वेदी की बुलाहट किसे कहते हैं? लोग वेदी के चारों ओर आ जाते हैं। जो भी है, मैं इस पर अधिक निर्भर नहीं करता। ये कलीसिया में जॉन वेस्ली की बेदारी के दिनों में आरंभ किया गया था। देखा, बाइबल ने कहा, जितनों ने विश्वास किया, देखिए उनका बपतिस्मा हुआ। यहाँ पर तालाब है पानी से भरा हुआ, उन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा कर रहा है जो स्वयं को मरने के लिए तैयार हैं। अब आप बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में गाड़े जा सकते हैं, परंतु जब तक जीवन का बीज नहीं है ये इसे नहीं जगाएगा। नहीं नहीं, जल का बपतिस्मा स्वर्ग से गिरी हुई ओस के समान है। ये बीज पर गिर सकती है, परंतु यदि उसमें जीवन नहीं तो ये जीवित नहीं रह सकता। परंतु यदि जल का वास्तविक बपतिस्मा स्वयं की मृत्यु और आप मरने के लिए तैयार हैं, हर उस चीज के लिए जो आपको आपके नामधारी मतसार के द्वारा जो कि सिखाया गया, जो कि वचन विरोधी है, और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के समान चलेंगे और अपने हृदय में ये चाहते हैं, ध्यान दें, जल का बपतिस्मा इस प्रातः आपका क्या करेगा? तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और पापों की क्षमा और गलतियों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, आपके पाप और आप पूला पाएंगे, हिलाने वाली भेंट, आप गति का पाएंगे, पवित्र आत्मा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और उन सब से सारी पीढ़ियों से ये होगा। पिता परमेश्वर, मैं लंबा बोला हूँ और लोगों का बहुत समय लिया है, परंतु प्रभु परमेश्वर इसका कोई अंत नहीं। ये ऐसा प्रतीत होता है आपको छोड़कर चले जाना और विश्राम करके वापस। हम मरते हुए संसार में जी रहे हैं, मरते हुए लोगों के बीच जीवन के संदेश के साथ और पुनरुत्थान के प्रमाण के साथ। प्रिय परमेश्वर, हम केवल एक बार मरणहार होने जा रहे हैं, और क्या होगा यदि हम इस सौभाग्य को हाथ से जाने दें? हमारे हृदय जल रहे हैं, हमारे प्राण उत्तेजित हैं, ये जो भीतर आए हैं, और बहुत से यहाँ इस सुबह संदेश को सुन रहे हैं। जी हाँ, 200 या 300 लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, वे प्रभु का विश्वास करना चाहते हैं, और निश्चय ही वो बीज मरा नहीं है। प्रभु, वे कैसे अपने हाथ इस प्रकार उठा सकते हैं? कुछ है? ओ परमेश्वर, ये मैं बूढ़ा, ये वो अय्यूब की पत्नी वहाँ खड़ी हुई कह रही है, ओ। परंतु प्रभु, वे अय्यूब जो विश्वासी है इस प्रातः भीतर आकर पूरी रीति से मर गया और इस पानी के बपतिस्मे में यहाँ गाड़ा गया। उसकी बूंदे जो स्वर्ग से आती हैं, परमेश्वर का वचन जो कहता है, ये सारे पापों को धो डालता है और इसे क्षमा करता है। आपका यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ है, किस लिए? आपके पापों के क्षमा के लिए, पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में। तब पिता, यदि वे बीमार हैं, वे चंगे होकर बाहर जाएं। संभव है यदि वे अपाहिज हैं, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ में बाहर जाएं। यदि वे पापी रहे हैं, वे बाहर धुले हुए स्वच्छ होकर जाएं। और यांत्रिकियां अंदर जाने के द्वारा गति का ऊपर से आती है, पवित्र आत्मा, और उन्हें पकड़ ले प्रभु, उनकी मरणहार देहों को जिला दें। तब हम वास्तविक नई भाषाएं सुनेंगे, परमेश्वर की सामर्थ, ना बोला जाने वाला प्रेम, मरता हुआ अनुग्रह और जीवता अनुग्रह और जी उठा हुआ मसीह, एक देह, एक दुल्हन, उसका प्रतिनिधित्व पृथ्वी पर कर रही है। पिता, ये तेरे हैं, इन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, मैंने वचन प्रचार कर दिया है, अब पिता इन्हें ग्रहण कर लें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं? क्या वो अद्भुत नहीं है? क्या आप संतुष्ट हैं कि आप ईस्टर के पुनरुत्थान के भागी हैं, कि आप उसके साथ जी उठे, अपने हाथ उठाएं? आप शामिल हैं। मेरे छोटे बाल को, जैसा कि पौलुस ने कहा होगा, उसकी नकल करने का यत्न नहीं कर रहा हूं, परंतु प्रेम, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैंने सड़कों को रौंदा और सब कुछ यहाँ कि यहाँ पहुँचूँ और आपके साथ बोलूँ। रेगिस्तान से निकला, बर्फबारी से होते हुए और आदि कि यहाँ पहुँचूँ। हम जहाजों में उड़ते हैं, आप राष्ट्र के आर पार गाड़ी चलाते हैं ताकि हम यहाँ जमा हो सकें। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के भाग हैं। शैतान आपको कभी कुछ और ना बताने पाए, एक दूसरे का भाग होते हुए हम उसके भाग हैं, और हम राज्य के संघी नागरिक हैं, इन आशीषों का एक साथ मिलकर आनंद ले रहे हैं, पुनरुत्थान का। और अब देखिए, अब आप पहले ही जी उठे हैं। जब परमेश्वर ने उसे जलाया, उसने आपको जलाया। पुत्र ठीक अब आप पर है, और अब जैसा वो था, बढ़ते हुए खिल रहे हैं कि अंत के दिनों में पूरी रीति से जी उठें। क्यों? क्या आप जानते हैं आपका प्राण बदल गया है? क्या ये नहीं आपकी देश की आज्ञाकारिता में आती है? क्या नहीं आज्ञाकारिता में? क्या कलीसिया वचन आपकी देह इसकी आज्ञाकारिता में आती है? क्या नहीं आज्ञाकारिता में? क्या कलीसिया वचन जो कि जीवन है? तो फिर आप मृतकों में से जी उठे। ये ईस्टर यीशु मेरे साथ है, ये ईस्टर आप और यीशु और ये ईस्टर आपके साथ मैं और यीशु, हम सब, या यीशु, आप और मैं, हम सब एक साथ जी उठे और हम अंतिम दिन जी उठेंगे। यद्यपि हमारी आत्माएं हमारी देहों को छोड़ती हैं, यहाँ तक कि हमारी देह सड़ और मट्टी में जाती हैं, जलाई जा सकती हैं, हो सकता है समुद्र की तलहटी में। बाइबल ने कहा, एक स्वर्गदूत ने अपना समुद्र पर उंडेला और हर चीज जो मरी हुई थी ऊपर आ गई। हमें कोई चीज नहीं छुपा सकती या हमें अलग करे उस परमेश्वर से, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, जिसने हमें एक साथ जिलाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने आपको यहाँ लंबे समय तक रोका। यदि वे लोग अब दूर संचार पर हैं, वे निश्चय ही 50 सेंट प्रति मिनट उन्होंने वास्तव में भुगतान किया इस प्रातः, परंतु मैं उस घड़ी में नहीं रुक सका, मुझे आगे बढ़ना ही था। अब प्रभु ने चाहा मैं आज रात्रि वापस आऊंगा कि आपसे फिर बातें करूं, और यदि मैं नहीं आ सका, और फिर आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, हम नहीं, हम और दूर संचार पर नहीं है। आप सब जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं, क्या आप नहीं जानते? अफ्रीका। मैंने लंबे समय से पुकारा, वर्षों से मैंने वापस जाने का यत्न किया। अब दर्शन प्रभु के आत्मा ने मार्ग तैयार किया है। उन्होंने कहा, जब उन बेचारे आम नागरिकों ने ये सुना कि मैं बार बार नहीं आया, जब मैं वहाँ था, वे रात दिन जमीन पर पड़े रहे और विलाप और रोते चिल्लाते रहे और कह रहे थे, प्रभु हमने क्या किया। उनमें से हजारों, उन लोगों ने यहाँ तक विश्वास नहीं किया कि उनके पास प्राण है, समझे। वे रोए और उन्होंने विलाप किया और वे रोए। आप पहले कोई भी घोषणा न करें, कृपया नहीं करें। यदि वो वीजा उन सेवकों के द्वारा होता हुआ पहुंच गया तो वे वहीं मुझे रोक देंगे। मुझे वहां एक शिकारी के समान जाना है। मुझे रानी के वहां तक जाना है जो 17 डिब्बे वाहन को लाई और सभा में आई। मुझे वहां पहुंचना है और उसके क्षेत्र में शिकार करना है, और मैं जाता हूं, मेरा पासपोर्ट इत्यादि सब शिकारी के लिए है, न कि धार्मिक सभा के लिए। तब वहाँ मुझे एक भाई मिलने जा रहा है, कहता है, आप क्यों नहीं एक छोटी सी सभा हमारे लिए करते। स्टेडियम पहले ही किराए पे उठे हुए हैं, वे ये जानते भी नहीं, समझे। ओ महिमा हो। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा बाधित ना हो कि मेरा प्राण जो अफ्रीका के लिए रोता है, जब से मैंने छोड़ा, होने पाए मैं फिर से वापस आने योग्य हूँ, तब महान सभा के लिए एक संदेश लाऊं। समझते मैं आपको आज के बाद से और ना देखूं जब तक मैं वापस ना आऊं। हम अभी कुछ दिनों में जा रहे हैं, मई 10 को। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? याद रहे, आप नहीं जानते कि क्या परेशानियां हैं। आपके प्रभावित होने तक टोटके वाले करने वाले और शैतान हर तरफ है, और ये ना सोचें कि वे नहीं जानते कि क्या करना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस विषय में बातें कर रहे हैं जब आप उनके सामने खड़े होते हैं। परंतु मैं जानता हूँ मैंने किस विषय में किया है, और मैं सम्मत हूँ कि वो मेरे उस वचनबद्धता को जो मैंने उनसे की है उस दिन के विरोध में बनाए रखने के योग्य है। अब यहाँ कुछ रुमाल रखे हुए हैं। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि आज सुबह ये पुनरुत्थान का संदेश और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, प्रभु और वचन से सिद्ध कर रहा हूँ कि वो जिलाने वाली सामर्थ विश्वास करने वाले बच्चों में है। इसलिए विश्वास के भरोसे कि जिलाने वाली सामर्थ ने मेरा जीवन बदल दिया है, और प्रभु ये लोग विश्वास करते हैं कि इससे इनके जीवन बदल गए हैं, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपने हाथों को इन रुमालों पर रखता हूँ। होने पाए परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को जिलाया और मुर्दों में से निकाल लाया, और वो आत्मा जिसने उसे मरुओं में से जलाया हमारे शरीर में निवास करता है। वो आत्मा जो मर जाने के पश्चात ईरीशा की देह पर थी और हड्डियों को छोड़ और कुछ नहीं था, उसके अंदर जी उठने की सामर्थ थी। प्रेरितों के हाथ में जी उठाने की सामर्थ थी। प्रेरितों के विचार, प्रेरितों की दृष्टि, विश्वासियों की जुबानों में, सब में जिला उठाने की सामर्थ थी। अब होने पाए वो जिलाने की सामर्थ, जैसा कि मैं ये वचन उनके ऊपर रखता हूँ, मेरा हाथ धारक का प्रतिनिधित्व करता है। अनुग्रह के द्वारा उस जिलाने की सामर्थ का होने पाए ये हर एक बीमार देह को जिला उठाए और वे फिर चंगे हो जाएं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा। ये केवल इन रुमालों के द्वारा ही नहीं, परंतु उन लोगों के लिए जो वहाँ भक्त मंडली में हर जो पीड़ित है, वे छोटे बालक, बड़े लोग, जो भी हैं, ठीक अभी जिलाने वाली सामर्थ उन्हें जिलाए यीशु के नाम में, आमीन। अब कितनों के पास वो जिलाने वाली सामर्थ है? अब एक दूसरे पर अपना हाथ रखें। यदि वो जिलाने वाली सामर्थ आप में है, अब केवल एक ही चीज है जो इसे रोक या विघ्न उत्पन्न कर सकती है, वो आपका अविश्वास। एक स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ, वो चंगी हो गई। एक रोमी सिपाही ने उसके मुंह पर थूका, वो नरक में चला गया, समझे। इसलिए निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर झुकाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बस सीधी सीधी प्रार्थना करें, ये कहें, प्रभु ये व्यक्ति, देखिए, बस एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम ये यीशु मसीह के नाम में करते हैं। मनुष्य में केवल यही नाम दिया गया है ताकि हम बचाए और चंगे हो सकें। ये लोग जो राज्य के संगी नागरिक, जिलाने की सामर्थ के अधिकारी, प्रभु अभी अभी इसने इन्हें जिलाया है, होने पाए आत्मा उकाब से उकाब पर जाए, वचन से वचन पर, जब तक यीशु मसीह की परिपूर्णता हरेक देह में शारीरिक आत्मिक के लिए प्रकट हो, या किसी आवश्यकता के लिए जिसकी आवश्यकता है, जैसे कि हम अपने हाथ एक दूसरे पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में।